प्यारी बहनों, परमेश्वर की कृपा से यहाँ तो हम दोबारा मौका मिला, यहाँ आपके देश पे आए और आपसे मिलके ये परमेश्वर के महान वचन को प्रकट करने के लिए। जैसे आपको जानते हैं और परमेश्वर की कृपा से आप पिछले 6 महीने में इतना सारे सच्चाई आपने सुन लिया, उसमें बहुत कुछ बातें आपको ताज्जुब भी हुआ होगा क्योंकि इससे पहले अभी कभी नहीं सुना ऐसे बातें। लेकिन ये कोई नई बातें नहीं है, वो पुरानी बातें, जैसे जैसे आप परमेश्वर की किताब में ढूंढ के चले जाते हैं तो वही बातें को आपको मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत आसानी से मिल सकते, क्योंकि वो यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा, मतलब ऐसे ही परमेश्वर अपना सच्चाई अपने ग्रंथ में छुपाया रखा है। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े सच्चाई देखने हैं जो हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के संबंध में है। मतलब हमारा परमेश्वर जो हम आराधना करते हैं कैसे है, कौन है। जैसे जैसे आपको जानते हैं, जब आप मसीहों के बीच में आप जाते हैं और चर्च को अटेंड करते हैं, वहां तो बताता है कि हमारा परमेश्वर एक नहीं तीन है। तो हम सवाल पूछते, तीन परमेश्वर? नहीं 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 नहीं, तीन परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है, लेकिन त्रिदेव। त्रिदेव का मतलब क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन अलग अलग बंदे हैं, लेकिन तीन परमेश्वर नहीं होते, ये तीन एक ही परमेश्वर होता है। तो ये हमारे को समझने के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि तीन बंदे अगर आप कुल मिला के देखते हैं तो कितने होना चाहिए? तीन होना चाहिए ना। तो एक एक और एक जोड़ने में कितना होता है? तीन होना है ना। लेकिन यहाँ एक एक और एक जोड़ने में एक ही बन जाता है। तो ये थोड़ा समझने में थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन बोलता है ये रहस्य है, ये परमेश्वर का रहस्य है, ये स्वर्ग का रहस्य बोलता है। तो जब वो बातें को हम सुन लेते हैं तो हमको लगता है छोड़ो, ये परमेश्वर का ज्ञान होगा, हमको क्या जाने ये कैसे हो। लेकिन ऐसी बात तो परमेश्वर के वचन में नहीं दिया गया है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर आमंत्रण करता है कि आइए बैठिए, बात करेंगे, वाद विवाद करेंगे, आपका क्या सवाल है, आपका मेरे बारे में क्या समझना है, वो सब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। तो आज हम सबसे बड़ा सवाल परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर आप असल में कहते हैं तीन बंदे हैं और एक ही परमेश्वर है या कोई और बात, ये बात तो आज हम देखने वाले हैं। ये तो कोई नया बात तो आज हम आपको बताने वाले नहीं है। जैसे जैसे आप सोचेंगे कि कोई ऐसा कुछ ब्रदर ने ऐसा कुछ मैजिक कर रहा है, एक नया नया बात हमारे को बता रहा है, ऐसा नहीं समझना। क्योंकि आज हम जैसे जैसे पिछले 22 क्लास आपने सुना ना, सभी तो परमेश्वर के वचन से ही लेके आपको सिखाया, तो आज भी ये बात भी हम परमेश्वर के वचन से लेके आपको धीरे धीरे समझाएंगे और वो वचन से प्रकट हो जाएगा रोशनी कि परमेश्वर असल में कैसे है। लेकिन हम शुरू करेंगे आज एक जगह में जहां पहला कलीसिया के शुरुआत में जब पौलुस परमेश्वर के सेवा कर रहा था, तो पौलुस ने एक जगह में गया, मतलब ग्रीक के देश में, ग्रीक के देश में, और वहां एक पहाड़ के ऊपर गया जिसका नाम था मार्स का पहाड़, और मार्स के पहाड़ में वहां देखा कि हर एक परमेश्वर के लिए एक बलि चढ़ाने का एक क्या बोलता है उसको, ऑल्टर को क्या कहता है,
वेदी था।
हर एक परमेश्वर के लिए वेदी था, और एक ऐसा वेदी देखा जहां लिखा गया था ये अनजान परमेश्वर जो हम नहीं जानता है, मतलब इज़राइल के परमेश्वर, ये अनजान परमेश्वर के लिए एक वेदी है। तो वो वचन अभी पढ़ के वहां से शुरू करेंगे, ये बहुत उचित होगा ये आज का पाठ के लिए। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 22 और 23, पंजाबी में प्रेरितों का काम आप अगर पंजाबी का लफ्ज और शब्द बोलना है आप बताइए।
तो पौलुस अरियोपगुस दे विच खड़ा होकर कहन लगा, हे अथेनियो, मैं तुहानू हर तरह नाल वड्डे पूजन वाले वेखदा हाँ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠਾਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਣਜਾਤੇ ਦੇਵ ਲਈ। ਉਪਰੰਤ
देखो अनजाने अनजाने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया रखा था। तो बोल रहा था मैं देखा ये बात मैंने पढ़ा और मैंने सोचा कि आपको बताएंगे कि इस अनजान परमेश्वर के बारे में जानकारी अभी मैं बताने को चाहते हैं। तो इसलिए उन सारे लोगों को इकट्ठा करके बोला आइए आइए मैं बताऊंगा इस अनजान परमेश्वर के बारे में ज्ञान। तो लगता है हम भी आज भी उसी मकाम पे आगे है जहां जैसे पौलुस को हुआ। और आज मैं पौलुस की जैसा आपको कहने को बहुत ही बड़ा परमेश्वर से वो क्या बोलता है कृपा मिल रहा है कि आपको ये सवाल मतलब हमारा परमेश्वर क्या अनजान परमेश्वर है। उस अनजान परमेश्वर के बारे में महत्वपूर्ण पवित्र ज्ञान आपको बताने के लिए परमेश्वर आज हमारे को वो कृपा दे रहा है। हमारा परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है ना। कोई नया परमेश्वर नहीं है। मसीह का परमेश्वर अलग इज़राइल के परमेश्वर अलग ऐसे भी बात ही नहीं है ना। आपको कबूल करते हैं है कि नहीं। तो हमारा परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है। तो इज़राइल का परमेश्वर क्या एक रहस्य है ये बात तो हम परमेश्वर के वचन में हम देख लेंगे। ये सवाल मतलब त्रिदेव का जो 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 क्या बोलता है शिक्षा त्रिदेव का शिक्षा जो है ये बहुत सालों से बहुत ही परमेश्वर के सेवकों के लिए बहुत ही बड़ा सवाल था। जैसे जैसा एक उदाहरण आपको बताएंगे मार्टिन लूथर एक बहुत बड़ा सेवक था। मार्टिन लूथर के जरिए से रोमन कैथोलिक कलीसिया को छोड़ के बाहर आके प्रोटेस्टेंट कलीसियों को शुरू हुआ। तो मार्टिन लूथर ने लिखा और प्रकट भी किया कि मेरे दिल में ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर प्रभु यीशु खुद ही पिता परमेश्वर है तो क्यों प्रभु यीशु जब मर रहा था क्रूस के ऊपर क्यों चिल्लाया मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर क्यों। वो वचन अभी पढ़ लेंगे वो मत्ती 27वां अध्याय और 46वां वचन मैं मत्ती 27 और 46
उठो चलिए
नहीं 27
मत्ती
27 46 और 30 को पहर यीशु ने उसकी आवाज नाल पुकारिया के एली एली लमा सबतानी जेदा अर्थ है हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर।
देखिए तो हे मेरे परमेश्वर तो इसके ये बात पढ़ते हुए मार्टिन लूथर को ऐसा लगा कि क्या यीशु बोल रहा है कि पिता उनका परमेश्वर क्या ऐसी बात है कि यीशु का परमेश्वर है पिता। तो ये सवाल उनके दिल के अंदर पैदा हुआ। तो इसको बहुत ही बड़ा सवाल हमारे को भी होता है क्योंकि वो जो हादसा जब हम पढ़ता है कि मेरे हमको लगता है देखो यहाँ इतने गम में इतने मरते मरने की आखिरी जो समय में परमेश्वर प्रभु यीशु को इतना उसके अंदर दर्द हो रहा था तभी तो सच्चाई ही बोलेगा ना। कोई नाटक नहीं है कोई ऐसा कोई जो एक क्या नाटक चलाया ऐसा कुछ नहीं बात है ना। तो यीशु ने अपने दिल से क्या चिल्लाया हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर। तो अगर हम मानते हैं कि त्रिदेव परमेश्वर में के शिक्षा में पिता पुत्र है और पुत्र पवित्र आत्मा है तो क्यों पुत्र पिता को देख के चिल्ला रहा है हे मेरे परमेश्वर क्यों। ये बहुत ही बड़ा सवाल था मार्टिन लूथर के लिए। एक और बहुत ही बड़ा परमेश्वर का सेवक था जो बहुत ही बड़ा विज्ञान भी था मतलब इज आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ये हिंदी में क्या बोलता है ग्रेविटी हर कोई चीज जब ऊपर हम फेंकता ना ऐसे ही नीचे ही गिरता है ऐसे ऊपर नहीं जाता वापस नीचे गिरता है। तो जैसा जमीन हर एक चीज को खींचता है जमीन की तरफ तो उसका एक शक्ति है खींच का शक्ति। ये खींच का शक्ति जो है के कारण से हम सब इस धरती पे हैं। अगर खींच का शक्ति नहीं होते तो हम इधर उधर लटक रहे होंगे ये हवा में। तो ये कींच का शक्ति पहला पहला मालूमात किया इस आदमी जो बहुत ही बड़ा नाम मशहूर नाम है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ये बात को समझने के बाद इस बात के बारे में बहुत बहुत किताबों भी लिखा, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते कि आइजैक न्यूटन अपने साइंटिस्ट को विज्ञान ना
विज्ञान
के ज्यादा विज्ञान के ज्यादा परमेश्वर के ज्ञान को उसको बहुत पसंद था। तो परमेश्वर के बारे में बहुत लिखा, खास करके दानियल का किताब के बारे में बहुत सी किताबें लिखा है आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन भी इस त्रिदेव परमेश्वर के शिक्षा के बारे में उनको बहुत ही बड़ा सवाल था, वो समझ नहीं पाया कि कैसे पिता ही पुत्र, पुत्र ही पवित्र आत्मा, तो ये नहीं समझ पाया आइजैक न्यूटन भी। उसी तरह आजकल की जो सेवकों के बारे में अगर आपको जाके पूछते, ब्रदर मेरे को एक सवाल है, मेरे को नहीं समझ पा रहा है ये त्रिदेव परमेश्वर का शिक्षा, क्या पिता ही पुत्र है, क्या पुत्र ही पिता है, क्या पिता ही पवित्र आत्मा है, क्या पवित्र आत्मा ही पुत्र है, ये कैसे बात है, क्योंकि मैं आप में ही हूं ना आप मैं हूं, तो ये कैसे ऐसा होता है, ये बात तो समझ नहीं पा रहा। ब्रदर जी हमारे को बताए, अगर आप कोई सेवक से जाके पूछ लेते तो आजकल के सेवकों उदाहरण दे गया, बोलता है बहन जी ये तीन की बात जो है ना ये बताने को बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है। जैसे आप देख लो एक अंडा अगर आप ले ले तो अंडा में कितना हिस्सा है, तीन हिस्सा है ना, बाहर का क्या बोलता है उसको छिलका, बाहर का छिलका, अंदर का सफेद और भी अंदर जाए तो उसका पीला मिलता है, ये पीला और ये सफेद और ये छिलका दो तीन मिलके एक अंडा बन जाता है ना। तो जैसे अंडा एक है, तीन अंडा तो नहीं है उधर, लेकिन अंडा एक है लेकिन हिस्सा कितना है, तीन हिस्सा है, तीन से बन जाता है एक अंडा। तो बताते ऐसे ही परमेश्वर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन ही एक है, लेकिन और भी अगर हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते जाए तो हम और भी सवाल पैदा हो जाता है। जैसे जैसा एक थोड़ा वचन अभी मैं आपको पढ़ूंगा, आप उसके बारे में सोच रहे, शायद वो वचनों आप भी पढ़ते वक्त आपको भी दिल में शायद प्रश्न पैदा हुआ होगा, पढ़ लो यूहन्ना से लेके यूहन्ना के सुसमाचार 20वां अध्याय 22वां वचन, यूहन्ना के सुसमाचार 20वां अध्याय 22वां वचन।
उसने एक कह के उन्हें उससे फूंक मारी के क्या तुसी पवित्र आत्मा लो।
देखिए तो यहाँ तो देख रहा है पुत्र अपने चेलों के अंदर फूंकते हुए बोलता है कि लो पवित्र आत्मा लो। तो पवित्र आत्मा एक तीसरा बंदा, पवित्र आत्मा एक बंदा होते हुए क्या पुत्र एक बंदा होते हुए अनेक के अंदर कैसे फूंकता है। पिता एक बंदा, पुत्र एक बंदा, पवित्र आत्मा एक बंदा। तो पवित्र आत्मा किसके अंदर था, पुत्र के अंदर था। तो अगर हो भी सका तो एक पवित्र आत्मा पुत्र के अंदर होते हुए वो एक पवित्र आत्मा फूंकता है कितने के अंदर, अनेक। तो ये कैसे हो सकता है, अगर एक बंदा हो तो कैसे अनेक के अंदर फूंकता है, ये बहुत ही उलझन की बात होता है ना। तो ये जैसे वचनों को पढ़ते हुए बहुत से परमेश्वर के लोग के दिल में बहुत ही सवाल पैदा हो रहा है कि ये त्रिदेव परमेश्वर का शिक्षा हम कैसे हम समझ जाएं। एक और वचन पढ़ लेंगे, ये लूका का सुसमाचार से 12वां अध्याय और 10वां वचन, लूका 12:10।
अते जे कोई मनुख दे पुत्र दे विरुद्ध गल करे ओनु माफ कीता जावेगा, पर जो पवित्र आत्मा दे विरुद्ध कुफर बके ओनु माफ ना कीता जावेगा।
तो आप अगर ये वचन हम पढ़ ले तो हमको क्या मालूम हो सकता है कि अब पुत्र से भी ज्यादा महिमा में कौन है, पवित्र आत्मा। तो पुत्र से भी ज्यादा महिमा पवित्र आत्मा अगर हो तो पिता का महिमा क्या क्या हिस्सा है, क्या पुत्र से बराबर या पवित्र आत्मा से ऊपर, ये बात तो हम कैसे समझे? हम क्या समझ रहे थे ये त्रिदेव की शिक्षा कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक जैसे महिमा में तीनों एक ही है, लेकिन यहां अगर हम ये वचन पढ़े तो हम साफ साफ मालूम हो रहा है कि ज्यादा ऊपर और ज्यादा महिमा किसके पास है, पवित्र आत्मा के पास है। तो एकता कैसा, एकता कैसा, अगर एक बड़ा हो है दूसरा छोटा है तो एकता कैसा, ऐसा बहुत सवाल ऐसे ही पैदा हो रहा है। अगर ये ऐसा जैसा सवाल आप लेके जाते हैं आपके परमेश्वर के सेवक के पास, तो आपको ऐसे उन लोगों से भी जवाब ऐसा मिलेगा जैसा मैंने आपको अंडा का उदाहरण दिया। एक और उदाहरण भी देगा, पानी ले लो, पानी का पानी थोड़ा पानी प्याला में लेके आओ, देखो पानी है ये, लेकिन अगर ये गर्म करे तो क्या होता है इस पानी को, बाफ में बदलते ना। तो अगर ये पानी को हम ठंडा करें, फ्रिज में डालें, फ्रीजर में डालें, तो ये पानी पानी हो जाता है? नहीं, पानी को बदलता, बर्फ बन जाता है। एक तो बहुत ठंडा करने में बर्फ बन जाता है, अगर वो आम तापमान में रहता है ये पानी रहता है, ज्यादा गर्मी में उसको चढ़ाए तो वो क्या बोलता है इसको हिंदी में, उबलते हुए वो वेपर स्टीम में बदलता ना,
भाप
तो क्या बोलता है,
भाप
भाप भाप कहता है,
भाप
स्टीम भी ठीक है, स्टीम तो आपका मजा रहना
चाहिए, धुआं निकलता है ना,
धुआं मतलब पानी के धुआं निकलते हैं, ये तो स्टीम है। तो लगता है पानी का तीन रूप है, ज्यादा ठंडा बन जाए तो वो बर्फ, ज्यादा गर्म बन जाए तो वो स्टीम। तो लोग बोलता है कि ऐसा ही हमारा परमेश्वर है, देखो जैसा पानी एक चीज लेकिन एक चीज में तीन रूप है, उसी तरह हमारा पिता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों एक ही परमेश्वर होते हैं लेकिन इनके रूप तीन है, ऐसा बताता है। तो अगर ऐसे बताए तो हमारे दिमाग में सवाल पैदा होता है कि पानी और बर्फ और स्टीम तीनों एक समय में नहीं हो सकता है, एक तो पानी बर्फ में बदलेगा या तो वो बर्फ वापस पानी में बदलेगा और अगर चाहे तो वो स्टीम में बदलता है। तो ये भी सवाल ऐसा पैदा होता है, क्या पिता को गर्म करना है या पुत्र को गर्म करना है, किसको ठंडा करना है किसको गर्म करना है ताकि वो एक और रूप में बदल जाए, ऐसा कुछ सवाल पैदा होता है जो हमको हंसी भी आता है। लेकिन ये जैसे उदाहरण हम सुनते हैं, कोई और लोग बोलता है साइकिल देख लो, साइकिल देखो आपका साइकिल में कितने चक्र है, दो चक्र है, लेकिन वो दो चक्र को चलाने के लिए एक तीसरा चक्र भी जरूरत है ना, वो जो चेन के लिए जो जंजीर डालता है ना, उसको चलाने में तीन चक्र साथ में चलाते हैं। तो इसको तीन चक्र जरूरत है एक साइकिल को चलाने के लिए, उसी तरह हमारा पिता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीन है लेकिन एकता में एक ही परमेश्वर होता है। तो ऐसा ऐसा कुछ उदाहरण आपने सुना गया होगा। तो हमेशा क्या ढूंढता है, तीन तीन ढूंढता है। आप आइसक्रीम पसंद करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं ना, एक कसाटा आइसक्रीम कभी खाया, कसाटा तीन रंग का आइसक्रीम, तो आज लगता है कि अगले बार अगर हम ये तीन तीन ढूंढे तो हम क्यों नहीं कसाटा आइसक्रीम भी बोले, देखो ये कसाटा आइसक्रीम है, ये एक ही आइसक्रीम है लेकिन इसके कितने रंग है, तीन रंग है। क्या हमारा परमेश्वर कसाटा आइसक्रीम का उदाहरण देना, तो लगता है देखो ऐसा ऐसा सवाल पैदा होता है, इतने इतने साले उदाहरणों देते हैं जो हमारे मन को शांति नहीं मिलता, क्योंकि हम ढूंढता है परमेश्वर के वचन से जवाब, हम नहीं ढूंढता है कोई मनुष्य अपने ही उदाहरण से दिया हुआ जवाब। तो आज हम देख लेंगे परमेश्वर के वचन इसके बारे में क्या कहते हैं। जैसे जैसे आपको जानता है शुरुआत में वो वचन हमने पढ़ लिया है, हमेशा वो वचन आपको याद में रखना है, यशाया 34वां अध्याय 16वां वचन, यशाया 34:16। 34
यहोवा दी पुस्तक विचो पाल के पढ़ो
देखो परमेश्वर की किताब में ढूंढो पढ़ लो ढूंढो क्या पढ़ना है क्या ढूंढना है हर एक सवाल का जवाब परमेश्वर के किताब में ढूंढना है क्यों क्योंकि जवाब इधर थोड़ा वहां थोड़ा है तो अभी हम इस सवाल का जवाब परमेश्वर की किताब में ढूंढ लेंगे पहला पहला हम ढूंढ लेंगे कि कितने वचन में ये त्रिदेव का शब्द आता है क्योंकि ये त्रिदेव का जो शब्द है कितने बार अगर हम परमेश्वर के वचन से वो सारे वचनों हम बाहर ले सकते हैं तो उस वचन एक एक वचन को पढ़ते हुए हमको मालूम हो जाएगा कि त्रिदेव के बारे में परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं तो ये बात ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इतना सारा बाइबल पढ़ने में इतना सारा बाइबल को ढूंढने में बहुत समय लगेगा लेकिन ये परमेश्वर की कृपा से आज के जमाने में बहुत ही आसान बात हुआ क्योंकि अभी कंप्यूटर आया कंप्यूटर से सवाल पूछ सकता है कंप्यूटर को बोलेगा कि एक त्रिदेव का जो शब्द पंजाबी के बाइबल में या तो हिंदी के बाइबल में कितने बार आता है अगर वो ऐसा सवाल कंप्यूटर से पूछता है कंप्यूटर खुद ही ढूंढता है और ढूंढते 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 थोड़ा समय लगेगा लेकिन जब हम ये सवाल कंप्यूटर से पूछा कंप्यूटर जी बोला बाइबल में नहीं है हमको वैसे हैरान हुआ क्या बात है हम मानते हैं हमारा परमेश्वर त्रिदेव परमेश्वर और बाइबल में नहीं शायद गलत हुआ दोबारा हमने ढूंढा दोबारा ऐसा कुछ ऐसा वो जो चिन्ह आया मतलब ढूंढ रहा दोबारा वही जवाब आया स्क्रीन के ऊपर ये शब्द परमेश्वर के वचन में कहीं भी नहीं है बहुत ही चौंक गया मैंने बाद में हमने सोचा चलो ये कैसी बात है क्योंकि ये जो त्रिदेव का शिक्षा है हर एक जगह में हम देखते हैं हमारा पास्टरों त्रिदेव का शिक्षा हमको सिखाते हैं हमारे गीतों में हम गाते हैं कि हमारा परमेश्वर त्रिदेव है तीन ही एक है हम कभी कभी जब हमारे दुकानें हम खोलते हैं या कभी कभी ऐसे ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों को भी नाम दिया गया है ये पवित्र त्रिदेव दुकान या पवित्र त्रिदेव का मोहल्ला ऐसा ऐसा कोई नाम भी दिया गया है बहुत सी जगहों के लिए हमारा बेंगलोर में एक सर्कल है सर्कल को क्या कहता है जंक्शन
चौरा
एक चौराहा है और उस चौराहे का नाम है होली ट्रिनिटी सर्कल तो ट्रिनिटी मतलब त्रिदेव चौराहा ऐसा नाम आता है हम त्रिदेव का गाना गाते हैं हम त्रिदेव के बारे में बार बार हमारे पास्टरों के मुंह से सुन लेते हैं लेकिन ये त्रिदेव का शब्द बाइबल में नहीं है पुराना नियम में एक भी भविष्यवक्ता यशाया से लेकर मल्किया तक एक भी भविष्यवक्ता इस शब्द को इस्तेमाल नहीं किया प्रभु यीशु जब अपना भाषण किया अपना सेवा किया इतने सारे बातें प्रभु यीशु ने बताया इतने सारे दृष्टांतों बताया लेकिन प्रभु यीशु एक बार भी त्रिदेव का शब्द इस्तेमाल नहीं किया और जब हम प्रेरितों के सेवा देखते हैं और प्रेरितों की किताबों देखते हैं और प्रेरितों के खत देखते हैं ना पौलुस ना यूहन्ना ना ही पत्रस ना ही याकूब आपने पढ़ लिए होंगे ना आप तो बाइबल पढ़ते हैं ना रोज ना एक भी भविष्यवक्ता एक भी चेला अपने खत में ये त्रिदेव का शब्द इस्तेमाल नहीं किया और आखिरी किताब जो प्रकाशित वाक्य है वहां भी एक भी जगह में ये त्रिदेव का शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ तो हमारे को बहुत बहुत चौंक गया क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो त्रिदेव का शिक्षा त्रिदेव का चिन्ह भी आ गया है देखो ये तो एक सर जो एक बहुत ही बड़ा क्या मूर्ति बनाने वाला है इसको क्या कहना बहुत ही बड़ा माइकल एंजेलो जो बहुत ही बड़ा मूर्ति बनाने वाला है ऐसे एक ये परमेश्वर का एक सर बनाए ये बोलता है ये बड़ा राजा का सर बड़ा राजा सबसे बड़ा राजा कौन है पिता परमेश्वर ना, परमेश्वर है, तो परमेश्वर बोलता है। और देखो परमेश्वर कितने शक्ल है, तीन, तो तीन शक्ल में कितने मुंह होना चाहिए, तीन, कितने नाक होना चाहिए, तीन, कितने आंख होना चाहिए, छह, लेकिन यहाँ एक दो तीन चार, सिर्फ चार ही आंख है। इसमें क्या बोलता है कि देखिए यहाँ तीन है लेकिन तीन अलग अलग नहीं है, तीन एक ही है। तो ऐसा एक बहुत ही बड़ा
कलाकार
के बनाया हुआ एक सिर है, राजा का सिर है यहाँ। तो हम देखते हैं अभी ये भी एक चिन्ह है जो हम बाइबल में देखते हैं, खुद ही किंग जेम्स बाइबल में ऐसा एक चिन्ह दिया गया है। बोलता है कि देखो यहाँ से लकीर शुरू होता है और कहीं भी नहीं रुकता, सब एकता में, एकता में, मतलब कोई अंत नहीं है, लकीर ऐसे चलती जाएगा चलती जाएगा चलती जाएगा। लेकिन कितने रूप है, तीन, तीन रूप है, तीन रूप लेकिन एक ही तस्वीर। तो बताता है ये है, इसको इसको अंग्रेजी में कहता है ट्रिक्विट्रा। इसको इसका इसका जो शिक्षा क्या है, तीन है लेकिन तीन एक है। तो ऐसे ऐसे चिन्ह मिलते हैं। और एक और बहुत ही बड़ा जो पेंटिंग है रोम में बहुत ही बड़ा पेंटिंग है, और उस पेंटिंग में तीन राजा बैठा हुआ है राजगद्दी में, बीच में एक बहुत ही पुराना बंदा जैसा सफेद बाल सफेद दाढ़ी बैठा हुआ है, उसके बाएने ओर में एक बैठा हुआ बंदा काला दाढ़ी और काला बाल है, जैसे वो कौन है, पिता का पुत्र प्रभु यीशु। लेकिन दाहिने ओर में एक और बंदा बैठा हुआ है जिनका दाढ़ी नहीं है और सर तो काला है। बोलता है बीच में पिता, बाएने ओर में पुत्र और दाहिने ओर में पवित्र आत्मा। तो एक बार ऐसा हुआ कि ऐसे ये वो तस्वीर को देखने के लिए बहुत लोग आए थे उधर रोम में, एक छोटा बच्चा पूछा तो ये पिता परमेश्वर है, पप्पा है, ये है पुत्र पवित्र पुत्र प्रभु यीशु है, और ये कौन है, ये प्रभु यीशु का छोटा भाई है, ये पिता परमेश्वर का दूसरा बेटा है। ऐसा सवाल पूछते वक्त लोग तो थोड़ा हैरान और थोड़ा हंसी भी शुरू हुआ, और उसके बाद सोचा मैंने क्या हंस रहा है, ये सवाल है ना, ये तीसरा कौन है, पवित्र आत्मा कौन है। पर अगर प्रभु यीशु के बारे में वचन बोलता है ये पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तो पवित्र आत्मा कौन है, दूसरा पुत्र या कौन है, ऐसा ऐसा सवाल पैदा होता है। तो ये सब सवालों का जवाब हम परमेश्वर के वचन में ही हम ढूंढना है, क्योंकि कोई और जगह में अगर हम ढूंढने जाते ना, हम इसका संतुष्ट जवाब नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है, कि अगर हम कोई सच्चाई कोई भी शिक्षा हम सुन लें, वो पुराना नियम में और नया नियम में भी बताना चाहिए। ये बात हम पढ़ लेंगे यशाया 8:20, यशाया 8:20।
वीरता के साथी नु जे ओ इस वचन अनुसार ना आखन का सचमुच उन्हें लई कौन ना सकेगी।
देखा, अगर कोई बात पुराना नियम में और नया नियम में दोनों हिस्सा में नहीं बताया गया, वो सच्चाई नहीं है। समझ गया ना, कोई भी बात कोई भी सच्चाई अगर हम सुन लेते हैं, कोई भी शिक्षा हम सुन लेते हैं, वो दोनों नियम में होना चाहिए, दोनों नियम उसके बारे में बताना चाहिए, पुराना नियम नया नियम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, आप उस वहां कुछ मार्किंग भी कर लो, क्योंकि इसमें से आप मालूम हो जाएगा कि सच्चाई क्या है, पुराना नियम में भी होना चाहिए नया नियम में भी होना चाहिए। तो यहाँ दिया गया है एक और बात हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु ने बताया उसका लंबा प्रार्थना जब किया ना, योहन्ना सुसमाचार 17वां अध्याय 17वां वचन, योहन्ना 17:17, वहां प्रभु यीशु ने बताया एक बात जो हम याद में रखना चाहिए कि परमेश्वर के वचन के बारे में एक बात है।
उन्होंने सच्चाई ना पवित्रता का, तेरा वचन सच्चाई है।
देखो तो ये बहुत ही बड़ी बात है, तेरा वचन सच्चाई है। अगर तेरे वचन कोई बात बता लेते तो वो सच्चाई है। लेकिन हम यशाया में पढ़ा वो सच्चाई पुराना नियम में भी होना चाहिए, नया नियम में भी होना चाहिए, क्योंकि तेरा वचन सच्चाई है। चलो आज परमेश्वर के वचन में ढूंढते हुए हम एक भी जगह में भी त्रिदेव का शब्द नहीं मिला, लेकिन अभी हम ढूंढ लेंगे ये त्रिदेव का जो शिक्षा मतलब प्रिंसिपल
सिद्धांत,
हाँ ये त्रिदेव का सिद्धांत अगर परमेश्वर के वचन में है हम पढ़ लेंगे। क्योंकि बहुत से मती भाइयों हमको बताते हैं, देखो ये वचन बताता है त्रिदेव का सिद्धांत, ये वचन बताता है त्रिदेव का सिद्धांत। वो सारे वचनों अभी एक के बाद हम लेके देख लेंगे। पहला दूसरा कुरिन्थियों त्रिदेव का सिद्धांत, समझ रहे सिस्टर?
हाँ,
मेरे हिंदी को आपको कोई मुश्किल नहीं है ना?
हाँ,
दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय 14वां वचन, दूसरा कुरिन्थियों 13:14,
प्रभु यीशु मसीह की कृपा परमेश्वर का प्रेम ते पवित्र आत्मा की संगत तुसा सबना दे नाल होवे।
देखा ये वचन बताता है, देखो यहाँ त्रिदेव का सिद्धांत है। चलो ये त्रिदेव का सिद्धांत हम समझ सकेंगे, लेकिन यहाँ तो ये वचन गौर से देखते वक्त हम पढ़ता है प्रभु यीशु मसीह का कृपा परमेश्वर, तो पिता ही परमेश्वर, क्यों पिता नहीं बोला, क्यों परमेश्वर बोला? क्या तीन में से क्या सिर्फ पिता ही परमेश्वर? क्योंकि देख लो सिर्फ पिता के बारे में क्या बोला, परमेश्वर। क्या सिर्फ पिता परमेश्वर है? ऐसे ही हो रहा है ना इधर, देखो प्रभु यीशु की कृपा पिता का प्रेम नहीं बोला, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगत। यहां नहीं बताया कि पिता का प्रेम, यह क्या बोला, परमेश्वर का प्रेम। तो ऐसा लगता है अगर हम त्रिदेव का सिद्धांत इधर ढूंढ रहे हैं, यहां तो त्रिदेव नहीं मिलता है, यहां तो एक देव मतलब पिता ही परमेश्वर ऐसा ही दिया गया है इसमें। तो ये तो हम त्रिदेव का सिद्धांत के लिए एक वचन तो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ एकता नहीं बताया। यहाँ अगर हम ढूंढते जाते हैं, यहाँ तो तीन हैं, लेकिन तीन में से सिर्फ पिता को कहा गया परमेश्वर, है कि नहीं, है कि नहीं? तो ये बात तो हम देखते हैं इसमें। अभी दूसरा वचन देख लेंगे जहाँ ये त्रिदेव का सिद्धांत दिया गया है और बोलते हैं मती।
समझ आया?
ये वचन
परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह की कृपा और तीसरा क्या, पवित्र आत्मा दी संगत। सो इथे अगर अति कहने हैं कि त्रिदेव एक है, लेकिन एकता नहीं ना, परमेश्वर अलग, प्रभु यीशु परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की संगत, यानी कि तीन चीजा इथे एकता तो नहीं दर्शा रही। हुण आपा कहने पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा, पुत्र कौन है, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का नाम पवित्र आत्मा, लेकिन पिता का नाम की चेंज हो गया, की बदल गया,
परमेश्वर।
ठीक है,
तो यहाँ तो इसलिए बहुत ही बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि हम ढूंढ के आते हैं यहाँ की क्या त्रिदेव का सिद्धांत है, ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल तीन है इधर, मतलब प्रभु यीशु, परमेश्वर और पवित्र आत्मा, ये, लेकिन यहाँ तो परमेश्वर जो शब्द सिर्फ पिता के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बहुत ताज्जुब की बात होता है। लेना है? कौन? चलो अगले वचन पढ़ लेंगे, मत्ती 28वां अध्याय 19वां वचन, मत्ती 28:19।
इसलिए तुसी जाके सारे कौमां नूं चेले बनाओ अते उन्हां नूं पिता अते पुत्र अते पवित्र आत्मा दे नाम विच बपतिस्मा दिओ।
ये एक और वचन जो लोगों को हमको बताता है कि देख लीजिए, यहाँ भी त्रिदेव का सिद्धांत है, क्योंकि बपतिस्मा जब हम देते हैं तो हम देता है पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से। बोलता है देखो यहाँ तो तीन है, लेकिन मैं सवाल पूछते हैं वापस, जरूर यहाँ तीन है, लेकिन यहाँ तीन एक है नहीं बताया, बताया गया इधर इसमें जरूर पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से, लेकिन तीन अलग 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 से बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं बताया गया कि तीन एक है, ऐसा नहीं बताया ना इसमें। तो ये वचन अगर हम एकता के लिए लेते हैं, यहाँ तो एकता नहीं बताया गया है, यहाँ तो अलग अलग, मतलब पिता के नाम अलग, पुत्र का नाम अलग, पवित्र आत्मा का नाम अलग, तो अलग अलग तीन नामों से बपतिस्मा देनी चाहिए ऐसे दिया गया है।
जब उसी पढ़ दिया ना एक बार ध्यान नाल पढ़ांगे तो सब पता लगेगा कि अलग है, बट एक बार पढ़ांगे तो कैसा लगेगा तीन लोग एक्चुअली देखो ध्यान नाल पढ़िए थे सामने पता लग जाएगा करके ये एक्चुअली तीन एक नहीं है। परमेश्वर अलग है, पुत्र अलग है और पवित्र आत्मा जी दूजी बारे में असली दिखाई दे दिखी है एक्चुअली।
और ये बात अगर हम बपतिस्मा के तरीका अगर हम सोचे तो मतलब प्रभु यीशु ने बोला इसी तरीके से बपतिस्मा आप दे दो, अगर हम वो बात अगर हम सोचे तो हम देखते हैं कि जब चेले बपतिस्मा का हुक्म दिया, बपतिस्मा किसके नाम से लेना है, एक एक चेले क्या बताया वो तो हम थोड़े वचनों से पढ़ के जान लेंगे। पहला प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38वां वचन, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38वां वचन,
तब पत्रस ने उन्होंने आख्या तौबा करो ते तुहाडे विचों हरेक आपो अपने पापां दी माफी दे लई यीशु मसीह दे नाम उत्ते बपतिस्मा लवे।
ठीक है, ये पेंटिकॉस्ट के दिन में पहला बार हुक्म दे रहा है कि बपतिस्मा ले लो, लेकिन कौन से नाम से बपतिस्मा लेना करके बोल रहा है, क्यों नहीं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु ने ऐसा हुक्म डाला ना, क्यों ऐसा हुक्म से नहीं दिया, क्यों सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से दिया। थोड़े लोग क्या हमको क्या बोलते हैं मालूम, नहीं ब्रदर वो शुरुआत के दिनों में वो जो पहले विश्वासी जो आया वो यहूदियों था, तो यहूदी को पिता के बारे में बताने की जरूरत थी नहीं था, सबसे महत्वपूर्ण बात था यहूदी को बताना है कि पुत्र कौन है, कि वो पिता के को एक पुत्र था, ऐसे ऐसे बताता थोड़े लोग हमको। तो हम सवाल पूछते हैं तो पवित्र आत्मा क्यों गायब, बोलेगा क्योंकि उसका जवाब नहीं जानते हैं। तो ये बात तो हम बहुत ही सुनना है समझना है बहुत, क्योंकि बहुत चालाकी भी चल रहा है आजकल और उस चालाकी में हम नहीं फंसना है, क्योंकि हमको चाहिए सच्चाई, परमेश्वर के वचन की सच्चाई। तो यहाँ तो एक बात तो हम साफ साफ मालूम हो रहा है कि जब प्रभु यीशु ने बताया पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे दो, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि पहले बार जब पेंटिकॉस्ट के दिन में पवित्र आत्मा सारे चेलों के ऊपर आया और प्रेरित यहाँ तो पौलुस पत्रस ने इतना बड़ा भाषण करके 3000 लोग के दिल को ऐसा लगा कि हम क्या करें, तो बोलता 3000 को आप जाओ और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लो। तो क्यों बदला वो हुक्म, एक और उदाहरण देखेंगे दूसरे जगह में, एक जहां चेले बपतिस्मा के बारे में बताते हैं, और लेकिन वहां भी कैसा हुक्म देता है पढ़ लेंगे। दसवां अध्याय प्रेरितों के काम 48वां वचन, 10:48। आपको समझ रहा है ना, क्योंकि अगर आप नहीं समझे तो साफ साफ बताए। यहाँ तो हम भाषण करने के लिए नहीं आया, आपको सिखाने के लिए आया है।
उसने हुक्म किया कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया।
देखा क्या हुक्म दिया, यीशु मसीह के नाम से। क्यों पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हुक्म नहीं दिया? एक और उदाहरण देखिए, ये बात तो हम समझ लेंगे। 19वां अध्याय 5वां वचन, पौलुस चेले जब वो हुक्म दिया बपतिस्मा लेने के लिए, किनके नाम से बपतिस्मा लेना है, क्या बोला, ये वचन में पढ़ लेंगे। 19:5
सुन के उन्होंने प्रभु यीशु के नाम विच बपतिस्मा लिया।
देखो सिर्फ प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। पतरस के उदाहरण में प्रभु यीशु पेंटिकॉस्ट के दिन में, बाद में पतरस और यूहन्ना जब गया वहां भी प्रभु यीशु, और दोबारा यहाँ भी पौलुस जब हुक्म दिया प्रभु यीशु। तो हर एक जगह में जहां भी प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, वहां चेलों ने हुक्म दिया बपतिस्मा लेने के लिए, हर एक जगह में चेलों बताते थे प्रभु यीशु के नाम से ले लो, प्रभु यीशु के नाम से ले लो। क्यों? प्रभु यीशु खुद ही बोला पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम से दे दो, लेकिन चेले ने क्या कर रहे थे, सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो करके बोल रहा था। तो इसका 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 इतना बड़ा फर्क का क्या मतलब है? यीशु एक बोलता है, चेले दूसरा करता है। क्यों? क्या चेले गलत कर रहे थे या क्या हम गलत समझ गया ये सारे बात? क्योंकि आजकल भी हम जब बपतिस्मा देते हैं हम कैसे नाम से देते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम से देते हैं ना। तो क्या हम सही समझ गया वो बात या चेले सही समझ गया वो बात? चेले ही सही समझ गया होगा ना, क्योंकि चेले वहां प्रभु के पास थे, पास ही थे। पहला पहला उनको भी ज्यादा पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा पाने के बाद इतने परमेश्वर के शक्ति से बात किया और बातों को समझा समझ गया, तो जरूर वो चेले ने ये बात को सही समझ गया होगा। बात क्या है यहाँ, प्रभु यीशु जब वो बात किया ना बपतिस्मा के बारे में, वो बपतिस्मा के बारे में बात नहीं किया। ये तो थोड़ा ताज्जुब की बात होगा। वो जो शब्द जो है ना मत्ती में जो आपने पढ़ा ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दो, वो बपतिस्मा का शब्द जो है ना उसका मतलब है डुबाना, डुबाना। तो वहां प्रभु यीशु क्या बोल रहा था, आप जाओ और ये वचन प्रचार करो और चेले बनाओ और पिता के नाम से और पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से उनको डुबाओ, उनको डुबाओ। डुबाने का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा स्थिति होता है जब हम जैसा हमारा गंदे कपड़े हम क्या करते हैं उसको लेके सर्फ के पानी में डुबाते हैं ना। तो डुबाने का मतलब सिर्फ बपतिस्मा नहीं है। जब हम चाय के पत्ते लेते हैं ना और गर्म पानी में अंदर डालते हैं उसको क्या कहते हैं, पानी में डुबाओ। तो वो डुबाने का मतलब सिर्फ बपतिस्मा नहीं, जब कभी हम डुबाते हैं वो डुबाना ही शब्द है बपतिजो। मतलब जो शब्द इस्तेमाल किया यीशु ग्रीक के भाषा में उधर मत्ती 28वां अध्याय में और 20वां वचन, वो उसका मतलब है डुबाना। तो अगर एक चेले बनना है बोला यीशु, आप 19वां वचन 28 और 19, यीशु बोला अगर आप कोई चेले बनना है तो आपने पिता के नाम से पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से उनको क्या करना है, डुबाना है। नाम का मतलब क्या, नाम का मतलब क्या, नाम का मतलब कि मेरा नाम कुर्सी नो, उनका नाम हुसन, मैं हूं सर नहीं हूं ना उन वो कुछ भी ना है, मतलब हम एक एक को नाम देता है ताकि हम समझ जाए कि वो कौन है मैं कौन है। सही जानकारी पाने के लिए हम कहता है कि एक इसका नाम इसका नाम इसका नाम। तो नाम का मतलब क्या है कि हमको मालूम होना चाहिए पिता कौन, पुत्र कौन और पवित्र आत्मा कौन। उसी तरह नाम का एक और मतलब आता है, कभी कभी आप सुन गया होगा, बोलता है अरे उसका नाम बदनाम हुआ। उसका नाम बदनाम हुआ का मतलब क्या है? नाम बदलना है क्या? बदनाम जब कहता है इसका मतलब क्या है? नाम को बदलना है, कोई दूसरा कोई नाम देना है, उस नाम को हटाना है। बदनाम का मतलब है स्वभाव के गुण के बारे में, उसके स्वभाव के गुण बिगड़ गया है, इसके लिए हम कहता है उसका नाम बदनाम हुआ। तो ये दूसरा मतलब नाम का मतलब क्या है? स्वभाव। अगर पिता का नाम, पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा के नाम अलग अलग से हम बोलते हैं, इसका मतलब है हम समझना है पिता का स्वभाव क्या है, पुत्र का स्वभाव क्या है और पवित्र आत्मा का स्वभाव क्या है। तो नाम का दो मतलब हमने देखा है, एक तो इंग्लिश में आइडेंटिटी, हिंदी में क्या कहते हैं?
पहचान।
एक तो पहचान, दूसरा तो स्वभाव, और तीसरा जो कहता है ज्ञान। जैसा आप कभी बातों में कहते हैं ना, मैं अजय के बारे में सब कुछ जानता है। अजय के बारे में मतलब नाम में जानता है, उनके जानकारी उनके ज्ञान। तो पहचान, स्वभाव और ज्ञान, तीन अगर मिले तो एक ही शब्द आता है, सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई में आता है पहचान, सच्चाई में आता है स्वभाव और सच्चाई में आता है ज्ञान। तो तीन मिला के होता है सच्चाई। तो यहां तो प्रभु यीशु बोलता है अगर तुम
आजकल बहुत आम बात है यहाँ पे, मतलब के पंजाब में, जैसे नामतारी या फिर ये दिव्य ज्योति वाले, वो क्या करते हैं ब्रदर, बोलते हैं नाम लेना है। जैसे वो नाम देते हैं, नाम नाम मतलब इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं? कि हम तुम्हें दिखाएंगे, यही बोलते हैं ना, कि उसका नाम लोगे तो वो तुम्हें ज्योति दिखाएगा, जो जो भी है, जो व्यास वाला या ये वाला। तो नाम वही के सद्भाव या पहचान करवाएंगे कि परमेश्वर कौन है। तो ऐसा
तो नाम का मतलब क्या है? अगर हम प्रभु यीशु बोल रहे हैं, अगर कोई यीशु का चेले बनना है, बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि यीशु का चेले आपने देखा, सभी ऐसा नहीं चाहता है कि मैं यीशु का चेले बने, क्योंकि यीशु क्या बोलता है, आओ मैं आपको आशीर्वाद करेंगे, आप बड़ा बड़ा घर बनाएंगे, आप दो तीन गाड़ी आपके पास रहेंगे, ढेर सारा पैसा आपके पास रहेंगे, हर एक को आप खाना देंगे, ऐसा बोल ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? बोला कि अपने आप को इनकार करो, अपने क्रूस को उठाओ,
पीछे
मेरा पीछा करो। ये कोई आसान बात नहीं है। तो कौन ये बात को दिल लगेगा कि मैं चेले बनाऊं? तो प्रभु बोलता है अगर अपने सेवा में आप कोई भी मेरा सेवा में मेरा जो चेला बनने में आप कामयाब हो, तो आप क्या करनी है? ये तीन के बारे में सच्चाई बताना है, पिता का सच्चाई, पुत्र का सच्चाई, पवित्र आत्मा का सच्चाई। ये तो थोड़ा अंदरूनी गहरे बात आपको बता रहा है, ये तो इस सब्जेक्ट के संबंध नहीं है। मैं इसलिए आपको बताया क्योंकि आपको समझ जाना है कि इसमें अंदर कितना गहरे बात है, कितना गहरे बात है। तो यहाँ तो कोई बपतिस्मा के बारे में प्रभु यीशु ने बताया नहीं, इसलिए चेले भी ऐसे तरीके से बपतिस्मा नहीं दिया। कोई एक भी चेला पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से, ऐसा कोई उस तरीके से बपतिस्मा नहीं दिया। वो बात तो हमने देखा है। तो अभी हम समझ गया कि दो वचन में हमने पढ़ा, दो वचन में त्रिदेव के सिद्धांत के बारे में ऐसे वचन देते हैं, लेकिन दो वचन में हम साफ साफ देख गए हैं कि यहाँ त्रिदेव का सिद्धांत प्रकट नहीं हो रहा है। तीसरा वचन हम देखेंगे जहाँ हम मिलता है, बोलते हैं कि इस वचन से साफ साफ त्रिदेव का सिद्धांत प्रकट होता है। ये तो पहला यूहन्ना पांचवा अध्याय सातवां वचन। नमस्ते, फर्स्ट जॉन 5:7, पहला यूहन्ना पांचवा अध्याय सातवां वचन।
अते ओ आत्मा है जिड़ा साखी दिंदा है, क्यों जो आत्मा सच्चाई है।
देखो आपका पंजाब के बाइबल में, पंजाबी के बाइबल में पांचवा वचन नहीं है। जरा देख लो वो जो नंबर है ना, 4, 6, 7 है कि नहीं?
नहीं है।
पढ़ लो कितना है।
4 भी है 5 भी है।
5 है। 5 में क्या है? पांच में क्या दिया है?
अते कौन है वो जिधर संसार उत्ते सत्य संदेह है।
बस उतना ही। के में
पर वो येनु नेचर है पे यीशु परमेश्वर का उत्तर है।
तो इसमें क्या है, अगर आप हिंदी के बाइबल में पढ़े तो आपको देख लेंगे वहां तो कुछ अलग शब्दों इस्तेमाल किया गया है जो पंजाबी में हटा दिया गया।
संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है।
पहला यूहन्ना 5:6-7
5:7 यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह ना केवल पानी के द्वारा, वन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था।
ये भी नहीं दिया गया है, हिंदी में भी नहीं दिया गया है, पंजाबी में भी नहीं दिया गया है, अंग्रेजी में देखना पड़ेगा। अंग्रेजी में दिया देखे तो वहां तो दिया गया है, For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. जैसे अगर हम अनुवाद किया तो स्वर्ग में तीन साक्षी है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता शब्द और पवित्र आत्मा, और ये तीन एक है। ये तो ना हिंदी में है और ना ही पंजाबी में है। क्यों? क्योंकि ये जो वचन जो अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं ये एक जुड़ा हुआ वचन है। ये 16वीं सेंचुरी को क्या कहते हैं, सदी 16वीं सदी के बाद वचन में जुड़ाया गया है। 16वीं सदी से पहले वो नहीं था। तो ये जो अभी मालूम हो गया है लोगों अनुवाद करते वक्त, मतलब जो बाइबल सोसाइटी वाले, और वो लोग क्या किया कि ये जो हिस्सा जो है ना, तीन है साक्षी स्वर्ग में, पिता शब्द और पवित्र आत्मा, और ये तीन एक है। ये जो हिस्सा जो है ना, ना आपको पंजाबी में है और ना हिंदी में भी है, लेकिन अंग्रेजी में ये मिलता है। तो ये जो हिस्सा साफ साफ बताता है कि तीन एक है, ये त्रिदेव का पक्का सबूत है। लेकिन ये वचन का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि आपका पंजाबी में नहीं है, हटा दिया गया है, आपका हिंदी में नहीं है, हटा दिया गया है, ये तो सिर्फ अंग्रेजी में किंग जेम्स बाइबल में है। तो ये बात एक ही वचन जहां साफ साफ दिया गया है कि त्रिदेव सच है, त्रिदेव का सबूत है, लेकिन ये सबूत झूठा सबूत मालूम हो गया अभी, क्योंकि झूठा सबूत का मतलब क्या है, ये परमेश्वर के वचन का हिस्सा नहीं है। मालूम हुआ गया कि ये जुड़ा हुआ शब्दों हैं, तो इसलिए हिंदी में और पंजाबी में क्या किया, वो जुड़े हुए शब्दों क्या किया, हटा दिया। तो इसलिए आपका पंजाबी में नहीं आता और ना ही हिंदी में आता है, लेकिन अंग्रेजी में आता है। तो ये अगर ये वचन हटाता है तो हम देखते हैं त्रिदेव शिक्षा का सिद्धांत बाइबल में कहीं भी नहीं है। तो अभी हम त्रिदेव के बारे में कैसे जान जाएं कि इसका मतलब क्या है, त्रिदेव को हम कैसे समझें। तो ये अगर हम अभी पढ़ना है तो हम अलग अलग पढ़ना है, अभी पिता के बारे में अलग, पुत्र के बारे में अलग, और पवित्र आत्मा के बारे में अलग, तीन के बारे में अलग अलग पढ़ते वक्त हम मालूम हो जाएगा कि क्या पिता पुत्र है, क्या पुत्र पवित्र आत्मा है, क्या तीनों एक है, शक्ति में, शुरुआत में, महिमा में। तो ये बात अगर हम समझना है तो हम अलग अलग अभी पढ़ना है, क्योंकि हमने शब्द को ढूंढा त्रिदेव नहीं मिला, एक भी जगह में भी त्रिदेव का नाम बाइबल में, शब्द बाइबल में नहीं दिया गया है। त्रिदेव का सिद्धांत ढूंढा, तीन वचनों हमने लिया, बोल रहे थे कि ये सिद्धांत है, लेकिन वचन गौर से पढ़ते वक्त हमने मालूम हो गया कि वहां त्रिदेव का शिक्षा नहीं दिया गया है। तीन है, तीन है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, लेकिन तीन एक है, एक भी वचन नहीं बताया। अभी हम इसका सच्चाई जांच करने के लिए हम क्या करना है, हम अलग अलग पढ़ाई करना है। पहला पिता परमेश्वर, अलग उसके बाद पुत्र यीशु मसीह, उसके बाद पवित्र आत्मा, लेकिन हम शुरू करेंगे पवित्र आत्मा से। आपका हिंदी के बाइबल में या आपके पंजाबी के बाइबल में पवित्र आत्मा जी तो नहीं दिया ना,
नहीं।
पवित्र आत्मा जी नहीं दिया ना, लेकिन तमिल में दिया गया है पवित्र आत्मा जी। तो ये भी एक एक अलग किस्म की बात जो है तमिल में हम मालूम होता है, और तमिल में जब हम सिखाते हैं तो उसको महत्वपूर्ण देते हैं। तो अभी हिंदी में वहां तो दिया ऐसा नहीं दिया गया, तो हम देख लेंगे। ये पवित्र आत्मा के विश्वास, आजकल पवित्र आत्मा का विश्वास देखे तो ज्यादा महत्व हर एक कलीसिया में पवित्र आत्मा को देते हैं, प्रार्थना में, आराधना में, गाना गाने में और जोश में। ज्यादा का ज्यादा किसको पुकारते हैं, ज्यादा किसको महिमा देता है, ज्यादा किसका के बारे में गाना बजाते हैं, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे पास आने, हम के हमारे ऊपर आने दे, आने दे। तो आजकल ज्यादातर महत्व पवित्र आत्मा को देते हैं, उतना महत्व पुत्र को भी नहीं देता, उतना महत्व पिता को भी नहीं देता। तो पवित्र आत्मा क्या, पवित्र आत्मा एक बंदा है, जैसा प्रभु यीशु एक बंदा है, पिता एक बंदा है, क्या पवित्र आत्मा भी एक बंदा है? बताता, हाँ पवित्र आत्मा भी एक बंदा है। आजकल दुनिया के हिसाब में देखे तो एक बहुत ही बड़ा सेवक का नाम है बेनी हिन, कभी सुन लिया उनके नाम का? तो ये बेनी हिन ने एक किताब लिखा, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, प्रणाम होली स्पिरिट, प्रणाम पवित्र आत्मा। तो उस किताब में बेनी हिन ने लिखा कि उनके अनुभव में, उनके प्रार्थना में बहुत अवसर में वो पवित्र आत्मा से मिला, पवित्र आत्मा उनके साथ बात किया, पवित्र आत्मा लंबी समय उनके साथ बातचीत भी किया, और पवित्र आत्मा बता रहे थे कि इस दुनिया की स्थिति बहुत ही दुखी भरी है, ये दुनिया बहुत ही पाप में गिरे हुए हैं, इस दुनिया का पीड़ा गम को देखते हुए बहुत दुख लगता है। और पवित्र आत्मा बेनी हिन के साथ रोया, तो बेनी हिन बोल रहा है कि पवित्र आत्मा इतना नाजुक बंदा है, इतने नाजुक दिल है कि हम बोल भी नहीं बता सकता कि ऐसा पवित्र आत्मा का दिल है। तो ऐसा एक सब इस किताब में लिखा गया है, शायद पंजाबी में अनुवाद नहीं हुआ या शायद हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ, इसलिए आपको और भी गहरा इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन अंग्रेजी में ये किताब है।
तो पे आता है ना, जब वो चैनल पे आता है तो हमेशा वो यही बोलता है, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आज इतने लोगों को शिफा मिलेगी, ऐसा जैसे
वो बताता है। लेकिन ये जैसा उनका अनुभव हुआ, पवित्र आत्मा से बात हुआ, पवित्र आत्मा बहुत मुलायम आदमी है, बहुत ही ऐसा बंदा है जो इतना नाजुक दिल वाले, ऐसे तो नहीं बताया ना, ये इनका किताब में बताया।
रोज सुबह उनके रूम में आके उनसे बात करता है,
बात करते थे
वो, तो यहाँ पे भी बहुत से लोगों से बात होती है,
बात होती होगी। चलो चलो चलो, तो हम हमारे भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, तो चलो देख लेंगे। तो यहाँ पवित्र आत्मा के लिए इतना महत्व देता है बेनी हिन। बेनी हिन क्या करता है, जब उनका बड़ा बड़ा मीटिंग लगाता है ना, तो उसके स्टेज के में एक कुर्सी लगाता है, बोलता है कोई भी नहीं बैठना है इस कुर्सी में, क्योंकि ये कुर्सी पवित्र आत्मा के बारे में के लिए है, पवित्र आत्मा के लिए है, पवित्र आत्मा आके उसके कुर्सी के ऊपर बैठेगा। तो ये सब सुनते सुनते आजकल आप लोग पता नहीं क्या क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि एक कहानी इस तरफ से, एक कहानी उस तरफ से, एक बात उस इस तरफ से, एक बात उस तरफ से, थोड़े को मन में ऐसा लगता है क्या ये सच है, क्या ये सच, अगर आप क्या है सच, अगर आप सवाल पूछते हैं ना तो वो सवाल का मतलब क्या है मालूम, क्या ये वचन में है, क्योंकि तेरा वचन सच्चाई है। तो जब आप सवाल पूछते हैं क्या ये सच है, इसका मतलब क्या है, क्या ये वचन में है, क्या ये वचन में, यही सवाल पूछना है, क्योंकि तेरा वचन सच्चे है। तो वचन में ढूंढते वक्त हम देखते हैं कि हमारा जो पढ़ाने वाला कौन है, हमारा पढ़ाने वाला है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने हमारे को पवित्र आत्मा के बारे में क्या सिखाया, वचन में पढ़ लेंगे। यूहन्ना 17:3, यूहन्ना 17:3, संदीप आप पढ़ेंगे 17:3।
और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने।
देखो यहाँ तो प्रभु यीशु बोल रहा है अनंत जीवन के बारे में। अनंत जीवन कैसे पाएंगे, बोलता है अनंत जीवन यह है कि वो पिता आपके बारे में और मेरे बारे में जिसने आप भेजा जाने। अगर वो ज्ञान किसी को जान लेते हैं उसको पाता है अनंत जीवन। अरे पवित्र आत्मा भूल गया क्या, पवित्र आत्मा का जानकारी हमको नहीं हासिल करना है अनंत जीवन पाने के लिए, क्या हुआ इधर। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा का नाम ही नहीं लिया, कितने बंदे के नाम लिया, दो ही, क्यों तीसरा नहीं लिया, किसी से पूछ लो क्यों तीसरा नहीं, क्या अनंत जीवन पाने के लिए हम पवित्र आत्मा का जानकारी ही नहीं चाहिए, इसको कैसे समझे। क्या यीशु बहुत थक गया होगा जब ये प्रार्थना किया कि सॉरी भूल गया, ऐसा हुआ ऐसा होने की गुंजाइश नहीं है ना, क्योंकि प्रभु यीशु परिपूर्ण था। तो यहाँ तो एक बहुत ही बड़ी बात छुपा गया है इस प्रार्थना में, क्योंकि यह 17:1 में यूहन्ना में बहुत लंबा प्रार्थना प्रभु यीशु करता है। इस प्रार्थना में 6 बार पिता को देख के पिता का नाम लेता है, 6 बार। कितने बार पवित्र आत्मा का नाम लेता है देख लेंगे, पहले वो 6 बार जहां जहां पिता का नाम लेता है और पिता को प्रार्थना करता है, वो वचनों पहला पढ़ने के बाद आप पूरा 17:1 पढ़ के मेरे को बताओ, पवित्र आत्मा का नाम क्या 3 बार बताता है, क्या 4 बार बताता है, या 2 बार बताता है, आप बाद में बताए, लेकिन पहला हम पढ़ लेंगे। यूहन्ना 17:1 पहला वचन जहां प्रभु पिता का नाम लिया, पहला वचन,
यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता वह घड़ी आ पहुंची है।
देखा, हे पिता, किसका नाम लिया, आकाश की तरफ देखते हुए किसका नाम लिया, हे पिता, पहले दफा, दूसरे दफा 5वां वचन में,
अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से
दोबारा, हे पिता दूसरे बार पिता का नाम लिया, तीसरे बार 11वां वचन,
मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता,
हे पवित्र पिता, तीसरे बार, अभी 4वां बार 21वां वचन,
कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है,
पिता 4वां बार 5वां बार 24वां वचन,
हे पिता मैं चाहता हूँ,
देखा 5वां बार, अभी 5 छठा बार देखेंगे 25वां वचन,
हे धार्मिक पिता,
देखा धार्मिक पिता, हे पिता पवित्र पिता, 6 बार इसी प्रार्थना में प्रभु यीशु ने पिता का नाम लेता है, पिता की ओर देख के पिता को प्रार्थना करते हैं। लेकिन कितने बार इस लंबा प्रार्थना में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का नाम लिया, आप ढूंढ लो, पढ़ लो पूरा 17:1 पढ़ लो, कितने बार, 2 बार, पवित्र आत्मा का नाम कितने बार लिया, एक भी बार नहीं, पूरा पढ़िए, अभी पढ़ लो, फिर पढ़ के देख लो, बताओ मेरे को कितने बार पवित्र आत्मा का नाम लिया, क्योंकि पिता का नाम 6 बार लिया, अभी पवित्र आत्मा का नाम कितने बार लिया? कम से कम 3 बार या 4 बार या 2 बार?
शुरू से पढ़ लो,
शुरू से पढ़ लो, सातवां आ गए पहले से लेकर आखिरी वचन तक ढूंढ लो कितने बार पवित्र आत्मा का नाम लिया, क्योंकि पिता का नाम 6 बार लेते हैं।
जोर से पढ़ लीजिए,
नहीं नहीं नहीं, आप ढूंढ लो, आप ढूंढ लो, लंबा लंबा अध्याय है, आप ढूंढ लो, आपके मन में ढूंढ लो, कितने बार हिसाब रखो कितने बार पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं। कौन सी बहन पूरा करता है पहला बोल दीजिए, कि 3 बार या 2 बार या 4 बार, कितने बार लेता है पवित्र आत्मा का नाम? जी एक भी जगह में नहीं बहन जी, आप एक भी जगह में नहीं है, नहीं बहन जी थोड़ा पढ़ रहे थे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, शक आ रहा है, पढ़ लो पढ़ लो, कितने बार आता है, कितना लंबा प्रार्थना, 6 बार पिता का नाम लेता है, आकाश की ओर को देख के पिता को परमेश्वर पिता को ही ये प्रार्थना करता है, पिता का महिमा के बारे में बताता है, क्या पवित्र आत्मा के महिमा कितने बार बताता है, ढूंढते देखे हुए एक बार भी नहीं आता। क्यों क्यों, जब आजकल हम मतीहों, हम इतने महत्व देता है पवित्र आत्मा को, हम इतने बार बार पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं, हम आराधना करते हैं, हम गाना गाते हैं, क्यों एक बार भी प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का नाम नहीं लिया? क्या पवित्र आत्मा नहीं है? क्या पवित्र आत्मा है बाइबल में, है ना, तो पवित्र आत्मा का नाम क्यों नहीं लिया?
और एक
किस कारण थे?
इतने पूरे बाइबल में इतने सबसे बड़ी प्रार्थना किसने और नहीं की है? यीशु ने की है, पर इतने बड़ी प्रार्थना में, इतने लंबी प्रार्थना जो परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को करते हैं, उसमें भी एक बार भी पवित्र आत्मा का नाम नहीं, ये भी ध्यान रखिए, पूरे बाइबल में इतनी लंबी प्रार्थना किसने नहीं की है? और यीशु ने की है, पिता को करके 6 बार बुलाया, पर पवित्र आत्मा के बारे में एक भी नहीं लिया, क्यों क्यों? ये हमारे दिमाग भी भैया बन समझा,
तो ये बात तो हम सोचते हुए अभी उलझन किससे हुआ? प्रभु यीशु से हुआ, कि प्रभु यीशु से हम सिखा रहा है, प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु बताता है पिता का नाम 6 बार, अभी हमको उलझन हो रहा है कि पवित्र आत्मा है कि नहीं, मालूम होता है कि हर जगह में बाइबल में पवित्र आत्मा है, लेकिन हमारा सवाल यीशु से क्या पूछता है? प्रभु आपने सवाल, आपने प्रार्थना किया, आपने 6 बार पिता का नाम लिया, महिमा भी किया, आराधना भी किया, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा का आराधना कर रहे हैं प्रभु, लेकिन आप क्यों पवित्र आत्मा का नाम नहीं लिया, आप बताएं प्रभु, क्योंकि हम इस सवाल का जवाब नहीं समझ रहे, आप बताएं, अगर आप ऐसा प्रभु से पूछते हैं, प्रभु जवाब बताता है, किधर, यहां थोड़ा वहां थोड़ा, हम जाएंगे वहां जहां प्रभु यीशु इस सवाल का जवाब हमारे को देता है। लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय 49वां वचन, लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय और 49वां वचन, 24:49।
अते देखो मैं अपने पिता दा करार तुहाडे उत्ते करदा हां, पर जद तक तुसी उपरो शक्ति ना पाओ शहर विच रहो।
हिंदी में पढ़ लो संदेश,
और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से समस्या ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो।
देखा किसके बारे, किसका किसका प्रतिज्ञा, पिता का प्रतिज्ञा क्या है? परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है कि उनका आत्मा भेजेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं, पढ़ लो
सामर्थ,
नहीं सामर्थ अलग है, तुम्हारे ऊपर पढ़ लो, एक शब्द इस्तेमाल किया,
और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर,
उससे पहले पढ़ लो,
पिता का करार तुहाडे उत्ते करदा हां,
पढ़ लो हिंदी में।
और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा,
मैं तुम पर उतारूंगा, मैं तुम पर उतारूंगा, मतलब तुम अनेक के ऊपर ये पवित्र आत्मा उतारूंगा, नीचे आएगा, तुम्हारे ऊपर आएगा। लेकिन ये कैसा एक बंदा, ये बंदा नहीं है, प्रभु बोलता है ये स्वर्ग का सामर्थ्य, स्वर्ग का शक्ति, ये स्वर्ग का शक्ति उतारेगा किसके ऊपर, आप सभी के ऊपर। तो इसलिए कि पवित्र आत्मा एक बंदा नहीं है, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर का शक्ति है, पिता परमेश्वर का अनगिनत शक्ति है, पिता परमेश्वर का सामर्थ है, और वो सामर्थ अनेक चेलों के ऊपर भेजेगा ताकि हर एक के ऊपर उतारेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने इस सामर्थ के बारे में नाम नहीं लिया, ये सामर्थ को प्रणाम नहीं किया, ये सामर्थ को कोई प्रशंसा भी नहीं किया, क्योंकि ये सामर्थ है। जैसे जैसे आज हम ये मीटिंग का जो इकट्ठा होने का जो संभव हुआ, ये हम किससे शुक्रिया अदा है, पिता परमेश्वर के शुक्रिया अदा है, पुत्र यीशु मसीह को शुक्रिया अदा है, और तीसरा करंट जी। अगर करंट नहीं होते हमको रोशनी नहीं मिलता, आज तो परवाह है, आज तो ठंडक के समय चल रहा था, लेकिन अगर ये मई या जून होते हैं, अगर पंखा नहीं चले तो आपको आप पढ़ सकता है क्या होता है, पसीना छूटते रहता है, तो पंखा रहा तो आपको थोड़ा राहत मिलता है और पढ़ने को बहुत अच्छा रहता ना। तो ये करंट जो है, करंट हमको मदद करता है, लेकिन हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि करंट जी को हम शुक्रिया अदा करना, क्योंकि ये तो शक्ति है ना। तो उसी तरह यहाँ तो हम वचन में हम पढ़ रहे हैं ये ताज्जुब वाला बात कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो पिता का प्रतिज्ञा है वो स्वर्ग से आता है और हम सबके ऊपर उतारता है। ये जो है एक शक्ति है, और ये सच्चाई चेला पत्रस जब पेंटिकॉस्ट के दिन में पवित्र आत्मा सभी के ऊपर आया, आपको जानता है, आपको याद भी होगा कि पेंटिकॉस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा इन सभी सबों के ऊपर उतार गया, उन सबके ऊपर आने से पहले वो बहुत डर रहे थे, सारा कमरा बंद किया, खिड़की दरवाजा बंद किया, और अंदर ऐसे छुपा के बैठ रहे थे जैसे बाकी के लोगों के ऊपर इतना डर था। लेकिन जब वो सामर्थ उनके ऊपर उतारा, उनके अंदर क्या आ गया, एक 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 क्या बोलता है, कॉन्फिडेंस को क्या कहता है,
विश्वास
आ गया, एक बल आ गया, और क्या किया, पहला खिड़की को खोला, दरवाजा खोला, और पत्रस के अंदर इतना शक्ति आया कि सबके सामने बात करने लगा, सबके सामने बात करते हुए उस एक ही भाषण में 3,000 लोग आके पत्रस से पूछा हम अब क्या करें। एक ही दिन में, एक ही भाषा में, भाषण में 3,000 लोग ने बपतिस्मा लिया। तो उस भाषण करते हुए पत्रस ने पवित्र आत्मा के बारे में बताया। अभी हम ध्यान देंगे वो वचन जहां बताता है पवित्र आत्मा क्या है। प्रेरितों के काम 2:33
33 जो परमेश्वर दे सज्जे हाथ को हाथ उच्चा होके और पिता तो पवित्र आत्मा का करार पाके उसने ये जो तुसी देखते अते सुनते हो बहा दिता।
हिंदी में
इस प्रकार परमेश्वर के दाहिनी हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया।
यह अगर अभी थोड़े क्षणों से पहले जब भाई संदीप, भाई बंटी अंदर आ रहे थे, अगर हम बोलते यह आ गया, क्या वो बहुत खुश हो जाएगा? यह आ गया। यह तो क्या किसको कहता है, कोई कोई चीज को या कुत्ता को, यह आ गया। लेकिन मनुष्य को कह सकता है यह आ गया। तो यह का शब्द परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करता है कि नहीं। अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर है और पवित्र आत्मा एक बंदा है, क्या यह जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं?
लेकिन हम अपा ये नहीं ना बोल सकते कि ए परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ऐसा बनने में बता सकते। मतलब कि बेइज्जती, इसका मतलब कि किसी भी इज्जत नहीं करनी,
इज्जत नहीं करनी।
यहाँ तो इज्जत ही नहीं है, इज्जत का शब्द ही नहीं है। यहाँ का मतलब है इज्जत का बिना का शब्द। लेकिन अगर आप बंदा के बारे में बताते हैं, इज्जत वाला शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ तो हम मालूम हो रहा है कि अंग्रेज में बहुत अच्छे दिया गया है, ही हैज शेड फोर्थ दिस विच ये नाउ सी एंड हियर। ये उंडेल कर दिया है। ये का मतलब क्या है? ये मतलब चीज, उंडेल। क्या एक बंदा उंडेल कर सकता है? पानी तो उंडेल कर सकता है, रक्त को उंडेल कर सकता है, लेकिन एक बंदा उंडेल कर सकता है? तो यहां से मालूम हो जाता है कि ये परमेश्वर का सर्वशक्ति सामर्थ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का शक्ति है, परमेश्वर का सामर्थ है। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ के बारे में बताया गया है, ये यह है। अभी परमेश्वर के ये परमेश्वर का शक्ति है, ये जो अंग्रेजी का शब्द जो है स्पिरिट और हिंदी में आत्मा, आत्मा तो अगर हम ग्रीक के भाषा में, क्योंकि नया नियम ग्रीक के भाषा में लिखा गया था, ग्रीक के भाषा में देखा तो वहां आता है न्यूमा। न्यूमा का मतलब है हवा, हवा जैसा न्यूमैटिक टायर। न्यूमैटिक टायर का मतलब क्या है? टायर के अंदर क्या है? क्या क्या भरा हुआ है? हवा। तो न्यूमा का मतलब है हवा। इसलिए जब पवित्र आत्मा पहले इन लोगों के ऊपर आया, जब पेंटिकॉस्ट के दिन में 120 लोग ऊपर के कमरे में बैठे हुए थे, उसके ऊपर जब आया, वचन क्या साक्षी देता है, वचन में पढ़ लेंगे, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय दूसरा वचन।
और अचानक आकाश का एक गूंज आई, यही वड्डी भारी अनेरी के वगन दी हुंदी है, अते उस नाल सारा घर जिथे वह बैठे सन भर गया, और उन्होंने अग जी जीबा वखरिया वखरिया हुंदिया दिखाई दितियां, अते वह उन्होंने विचो हरेक उत्ते ठहरिया।
हिंदी में
एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की थी, सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया।
तो वहां तो हवा नहीं दिया गया ना,
आंधी हवा ही होती है,
आंधी हवा,
बहुत तेज हवा,
बहुत तेज हवा। तो ये आंधी जो है ना, अंग्रेज में कहता ए रशिंग माइटी विंड। तो ऐसा हवा जो अगर हम देखे हम घबराते हैं, क्योंकि इतना शक्ति है उस हवा में, इतना आंधी का, जैसे तूफान पैदा होता है ना आंधी से, तो आंधी का शक्ति, आंधी का सामर्थ ऐसा महसूस हुआ कब? वो पेंटिकॉस्ट के दिन में। और उस शक्ति, उस आंधी के जरिए से उस एक एक के सर के ऊपर एक जलते हुए नाक, एक एक के सर के ऊपर खड़े थे,
जुबान
नाक, मतलब
ऑल ऑफ देम वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट।
तो हां ब्रदर बोलता है तो अगले वचन भी आप पढ़ लो,
वचन भी पढ़ लिए, चारों वचन। पवित्र आत्मा नाल भर गया। हिंदी में क्या लिखा है?
वे सब पवित्र आत्मा से भर गए।
भर गए,
भर गए। तो पवित्र आत्मा अगर एक बंदा होता तो 120 के अंदर क्या 120 टुकड़ा होके एक एक में भर गया? कैसे ये कैसे समझे? तो भरने का मतलब क्या है? कोई एक बंदा दूसरे के अंदर भर जाता है। तो ये भरने का मतलब क्या है कि ये बंदा नहीं हो सकता, ये एक शक्ति ही होना चाहिए।
शक्ति आपके भर गई,
तो शक्ति से भर गया, सामर्थ्य से भर गया, आंधी के रूप में आके हरेक के ऊपर फैल के उसके ऊपर पड़ गया करके हम पढ़ रहे। तो ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का जो शक्ति है, ये कोई नया ज्ञान तो हम नहीं पा रहे हैं, ये कोई नया चीज भी नहीं है, ये तो पुराना नियम से ही पढ़ते हैं। पुराने नियम में क्या शब्द दिया गया है? परमेश्वर की आत्मा। नया नियम के क्या शब्द आता है? पवित्र आत्मा। तो ये पवित्र आत्मा नया नियम में, परमेश्वर की आत्मा पुराना नियम में, दोनों एक ही है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए से सारे काम होता है। परमेश्वर का जो शक्ति, जब परमेश्वर अपना शक्ति को इस्तेमाल करते हैं, अपने सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हैं, उस शक्ति से चीजों बन जाता है, बातों प्रकट होता है। तो ये पवित्र आत्मा के जरिए से हम अभी बहुत से वचनों में हम पढ़ लेंगे कि क्या क्या प्रकट हुआ जब जब परमेश्वर के आत्मा प्रकट हुआ। पहला पढ़ लेंगे पहला अध्याय उत्पत्ति में दूसरा वचन, जहां परमेश्वर के बारे में दिया गया है कि परमेश्वर इस धरती के ऊपर अपने सृष्टि और रचाने का काम शुरू किया। कैसे शुरू किया? पढ़ लो।
धरती बेडोल से सूनी सी अते डुंगियाई उत्ते अनेरा सी ते परमेश्वर दा आत्मा पानिया दे उत्ते सूंदा सी। परमेश्वर ने आख्या के चानन हो वेता चानन हो गया। ता परमेश्वर ने चानन रिठा पे चंगा।
परमेश्वर की आत्मा क्या हुआ दूसरा वचन में?
सूंदा पानी दे
पानी के ऊपर
मंडरा
मंडरा हिंदी में पढ़ लो।
पृथ्वी पे डोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था।
मंडलाता था। मंडलाता था का मतलब क्या है?
मतलब
घूम
रहा था।
आप ये भी कह सकता है कि मंडलाता था मैं इसके ऊपर बैठा हुआ था, पानी के ऊपर बैठा हुआ था। जैसे जैसे मुर्गी अपने अंडे के ऊपर बैठता रहता है। क्यों अपने अंडे के ऊपर बैठता रहता है? क्योंकि 24 दिन 25 दिन या 37 दिन के 27 दिन के बाद क्या प्रकट होता है? छोटे छोटे चूजे प्रकट होता है। तो उस बैठने के जरिए से जिंदगी प्रकट होता है कि नहीं? एक मुर्गी जब अंडे के ऊपर बैठता है थोड़े दिन के बाद क्या प्रकट होता है? नई जिंदगी प्रकट होता है। उसी का उदाहरण परमेश्वर लेके हमको समझा रहा है कि परमेश्वर ये रचाने के काम कैसा किया। अगर परमेश्वर उनके बातों में बता देते हम नहीं समझेंगे। जैसे अगर हम अभी आपसे चाइनीज में बात किया करें तो आप क्या समझेंगे? क्या अगर हम फ्रेंच में बात करें आपको समझेंगे? अंग्रेजी में बात किया आप समझेंगे? तो ये बात, ये जो भाषा जो है आप से ऊपर है, आप नहीं समझता है। तो सिर्फ अगर हम हिंदी में या पंजाबी में बताएं तभी आप समझ जाएंगे, है कि नहीं? तो उसी तरह परमेश्वर को जानता है कि एक मनुष्य को, मनुष्य के जाति को इतने बड़े बड़े कामों और बड़े बड़े बातों के बारे में बताना है तो मनुष्य को समझने की जैसे शब्दों को और उदाहरणों को दिया तो मनुष्य को क्या करेगा? मनुष्य समझ लेंगे। तो इसलिए मुर्गी का उदाहरण लिया इधर। तो पानी के ऊपर मंडलाते थे का मतलब क्या है? जैसे मुर्गी अपने अंडे के ऊपर बैठ के उचित दिन के बाद क्या होता है? नया जिंदगी प्रकट होता है। ये बात तो यहाँ एक ही शब्द में सारांशिक रूप में दिया गया है। इतना बड़ा काम परमेश्वर, इतना बड़ा काम किया कि उतना बातें बताए तो हम नहीं समझेंगे। तो परमेश्वर सोचा चलो हम इनको बहुत सरल की बातों में हम उनको बताएंगे ताकि वो समझ जाएंगे कि क्या हुआ। तो यहाँ तो परमेश्वर की आत्मा प्रकट हो रहा है पहले बार परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति 1 और 2। अभी दूसरे उदाहरण देखेंगे परमेश्वर के वचन के बारे में, वो ड्यूट्रोनॉमी को क्या कहता
व्यवस्था विवरण
34वां अध्याय 9वां वचन व्यवस्था विवरण 34:9।
नून का पुत्र यहोशुआ बुद्धि दे आत्मा नाल भरपूर थे क्यों जो मूसा ने अपने हाथ उसते रखे सन।
बुद्धि दी आत्मा,
बुद्धि दा आत्मा वहां दिया गया है। हिंदी में पढ़ लो संदीप।
और नून का पुत्र यहोशु बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था।
तो बुद्धिमानी का आत्मा, बुद्ध का आत्मा, इसका मतलब क्या है? क्या अलग अलग, अगर हम पवित्र आत्मा बंदा समझ लेते तो बुद्ध का आत्मा अलग, सामर्थ्य का आत्मा अलग, विश्वास का आत्मा अलग, जैसे जैसे अलग अलग बंदा होते हैं। लेकिन हम मालूम हो रहा है कि अभी परमेश्वर का आत्मा शक्ति है, सामर्थ है, और उनके जरिए से अलग अलग किस्म किस्म के कामों और किस्म किस्म के कर्मों पैदा होता है और प्रकट होता है। तो यहां तो देख रहा है परमेश्वर के आत्मा के जरिए से क्या प्रकट हुआ। यहोशु मतलब यहोशुआ के ऊपर आया था बुद्धि, क्योंकि मूसा जो इतने साल इतने लोग को चलाया, अभी मूसा मरने के बाद ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आने वाला? यहोशुआ के ऊपर आने वाला। अगर यहोशुआ को क्या समझना चाहिए? बुद्ध उनके ऊपर समझना चाहिए। तो पवित्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनको बुद्ध देता है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो ये दूसरे उदाहरण हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में। तीसरा उदाहरण हम देख लेंगे शिमसोन के बारे में। शिमसोन न्यायाधिपति का किताब 14:6 न्यायाधिपति का किताब 14:6
ਜਿਹਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਿਮਸੋਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਫਾੜਿਆ ਜਿਸ ਪਰ ਕਠੋਰੇ ਨੂੰ ਫਾੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ।
ਯਹਾਂ ਤੋਂ ਬਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਸੋਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਂ ਉਸ ਉਨ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਤੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਮੇਂ पैदल चल के जा रहे थे। माँ बाप थोड़ा आगे, ये थोड़ा पीछे था, और अचानक शेर उसके ऊपर, ऐसा ही शेर हमेशा अगर कोई के ऊपर लपेट क्या बोलता है अटैक क्या कहता है आक्रमण करता है, कोई आक्रमण करता है तो ऐसे जमीन पर नहीं आता, ऊपर से ऐसे कूद के नीचे आता है। जब ये शेर कूद के आया ना शिमसोन को पकड़ने के लिए, डर में शिमसोन किसका डर हुआ? शेर का मुंह, इसलिए शेर का मुंह पकड़ता है। तो शेर का मुंह पकड़ते वक्त उसको हम उसके ऊपर नहीं काटता करके ऐसा कुछ उसका मुंह को पकड़ रहा है, लेकिन उसको महसूस लगा कि उसको ऐसे पकड़ते हुए उसका मुंह ही तोड़ लिया। अब देख लो, कभी कभी किसी के घर में अल्सेशन का कुत्ता रहता है, अल्सेशन बड़ा कुत्ता है, उसका मुंह अगर जब हम खेलते रहे तो उसका मुंह हम पकड़ भी नहीं सकता, इतना शक्ति है उसके जो क्या कहता है जबड़े में। तो एक शेर के जबड़े में कितना शक्ति है मालूम? हड्डी ऐसा बिस्कुट की तरह टुकड़ा टुकड़ा करता है। तो ऐसा जो जबड़े ये शिमसोन अपने हाथों में पकड़ के ऐसे ही फाड़ रहा है जैसा कोई बचड़ा का जो मुंह तोड़ रहे थे। तो कहां से आया इतना शक्ति शिमसोन को? इसलिए कि वचन बोलता है पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतारा, इसलिए उसको ऐसा शक्ति आया। तो ये शक्ति शिमसोन एक और जगह में बाद में गाजा के नगर में हम पढ़ लेंगे 16 उसी न्यायाधिपति 16:2-3 वचन।
ਅਤੇ ਆਜਾ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਜੋ ਸਿਮਸੋਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪਾਤੇ ਰਹੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਲੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਮਸੋਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਡੇਰੀ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਣੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਵਰੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਪੜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਿੰਦੀ ਨੇ
संतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर भेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ी की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है।
तो यहाँ तो देख रहा
है
यहाँ तो देख रहा है कि ये जो एक हादसा हुआ शिमशोन गाजा के नगर के अंदर था, गाजा वाले को ऐसा उनको एक प्लान था कि इसको फंसाना है, इसको मारना है, तो वो क्या करता है अपने नगर का सारा दरवाजों को बंद करता है। उन दिनों के दरवाजों बहुत ही लंबा था, 20 फुट या 25 फुट इतना लंबा दीवार और इतने मोटे लकड़ी से बने हुए थे और इतना बड़ा बड़ा ताला लगाते थे। तो इतना बड़ा दीवार और ताला क्या करता है शिमशोन, जब वो मालूमात होता है कि ये लोगों को ऐसे प्लान रखा था मेरे को मार डालने के लिए, तो वो उठ के उस ताला नहीं तोड़ता है, ताला नहीं खोलता है, बस ऐसे ही दोनों दरवाजे ऐसे ही उठाता है। अभी आप कोशिश करो, कोई आदमी ये दरवाजा आपका फाटक कोई उठा सकता है? एक आदमी उठा सकता है? उठा नहीं सकता। लेकिन वो इतना वजनदार दरवाजा ऐसा ही उठाता है, अपने कंधे पे डालता है, थोड़े दूर चल के एक पहाड़ के ऊपर डाल के ऐसे ही चले जाते हैं। तो इतना शक्ति इस शिमशोन कहाँ से मिला? ये परमेश्वर का शक्ति है, ये है परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर के आत्मा शिमशोन को शारीरिक बल दिया, जैसा जैसा यहोशुआ को बुद्ध दिया, यहां तो शिमशोन को शारीरिक बल दिया। वहां ये जो दुनिया में प्रकट होते समय दुनिया में रक्षाने का काम शुरू हुआ। तो परमेश्वर के आत्मा से अलग अलग किस्म के कर्मों, अलग अलग चीजों प्रकट होते हैं। तो ये बात को हम तीन वचनों में हम देखा, अभी चौथा हम देख लेंगे। ये है निर्गमन 31वां अध्याय दूसरा और तीसरा वचन, निर्गमन 31:2-3। पंजाबी में निर्गमन है इकतीस दो और तीन। हिंदी में पढ़ लो।
सुन, मैं उरी के पुत्र बतलेल को जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि प्रवीणता ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूँ।
तो यहाँ तो देखता है कि जब परमेश्वर ने ये तंबू बनाने का प्लान करता है, योजना करता है, तो परमेश्वर बोलता है मूसा को, मेरे को एक तंबू बनाना है, और उस तंबू के बनावट में अलग किस्म किस्म के काम होंगे, सोने का, चांदी का, लोहे का। और समस्या ये था कि ये इजरायली वालों जब मिस्र के देश को छोड़ के बाहर आया, उनको सिर्फ तीन काम कर रहे थे मिस्र के देश में। एक तो ईंटे बना रहे थे, दूसरा थोड़ा कुछ एग्रीकल्चर क्या कहता
खेती
खेती बाड़ी, थोड़ा तो खेती बाड़ी कर रहे थे, और थोड़े तो बड़े बड़े मिस्र के मंत्रियों के घर में सेवक के काम कर रहे थे। किसी को सोने का काम का जानकारी नहीं जानता था, या चांदी या लोहा या लकड़ी, किसी को वो जानकारी उनके पास नहीं था। तो परमेश्वर ने बोला चलो एक काम करो, एक आदमी मेरे पास लाओ जिनका नाम बजलेल, बजलेल को मेरे पास लेके आओ, और मैं क्या करता हूँ इस बजलेल के ऊपर मैं मेरा आत्मा उंडेल करेंगे, और बजलेल ये सारे किस्म का काम का जानकारी अपने आप समझ जाएंगे। अभी बजलेल क्या करेगा, एक स्कूल खोलेगा, और स्कूल में एक एक जो बाकी के लोगों उस स्कूल में हिस्सा लेंगे, एक 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 काम वो समझ लेंगे और सीख लेंगे। तो इसी तरह यहाँ तो देख लेंगे कि ये तंबू बनाने के समय में ऐसा हुआ, और परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा बजलेल के को दिया और उस पवित्र आत्मा से बजलेल को क्या सीखा, वचन में क्या दिया है, उस शब्द का क्या है,
बुद्धि प्रवीणता और हर काम करने की
बुद्धि, बुद्धि प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा,
वही सब प्रकार के काम समझ देने वाले आत्मा। तो इसी तरह देखो इधर पवित्र आत्मा के जरिए से हुनर एक एक को मिलता है, इस बजलेल को मिलता है और ये जो ज्ञान बहुत बाकी के लोगों को वो देता है। तो एक और जगह में अभी हम देख लेंगे जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा आज के दिनों में जहां हम रहते हैं, क्योंकि ये पुराने दिनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी एक एक वचन, अभी आज के दिनों में जब हम हैं, जब अभी हम परमेश्वर के विश्वासी हैं, तो हमारे में ये पवित्र आत्मा क्या काम करते हैं ये वचन में पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 18वां वचन,
वन में अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उस दिनों में अपने आत्मा में से उंधेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे।
देखो वो भविष्यवाणी करेंगे, भविष्यवाणी क्या है आजकल, भविष्यवाणी क्या समझ के रखे हमारे मसीहों, किसी के गिरजाघर किसी के कलीसिया में सुन लेंगे भविष्यवक्ता आ रहा है, मशहूर भविष्यवक्ता आ रहा है, आता है आराधना के बाद प्रार्थना करता है, आंख बंद करता है और बोलते शुरू करता है। एक बहन है यहाँ, बहुत दिनों से शादी के सोच रहे हैं, शादी के प्रयास में है, लड़का देख रहे हैं, 2-3 लड़का देखा, पसंदी का नहीं था, वो बहुत ही फिक्र होने लग रहा है। प्रभु आपको कहता है आप फिक्र मत कीजिए, जनवरी के महीने में आप लड़का मिलेगा, वो आपका लड़का होगा, उससे शादी करो, ये भविष्यवाणी। दूसरा भविष्यवाणी है ये लड़का बहुत दिनों से उलझन में है, प्रभु कहता है कि तुम सेवा में अंदर आए, सेवा में लग जाओ, क्योंकि तुम बहुत ही बड़ा सेवक बन जाएंगे परमेश्वर के वचन के। कोई दूसरे को बोलता है, एक बुजुर्ग औरत इधर है, उनका कोई शरीर का काम नहीं हो रहा है, उसको बहुत गम हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है, बहुत डॉक्टरों के पास गया, कुछ भी असर नहीं पड़ा, अब भी बोल रहा हूं इसी वक्त प्रभु के नाम से चंगा हो जाए, ऐसा बोलता है। तो ऐसा 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 आजकल ये सब भविष्यवाणी कहता है कि नहीं? लेकिन भविष्यवाणी सचमुच भविष्यवाणी क्या है, हम वचन में ढूंढते वक्त इसका मतलब हम मिलता है प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 10वां वचन, प्रकाशित वाक्य 19:10।
तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा, उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, क्योंकि परमेश्वर को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है।
देखो यीशु का गवाही ये है भविष्यवाणी का
असलियत।
तो कोई काम के बारे में, कोई शादी के बारे में, किसी का समस्या के बारे में, किसी के सेवा के अंदर दाखिल होने के बारे में, ये गवाही परमेश्वर ये भविष्यवाणी का असलियत नहीं है। असली भविष्यवाणी ये है यीशु के गवाही, और यीशु की गवाही कहाँ है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, बताओ कहां कहां कैसे कैसे यीशु प्रकट हो रहा है, ये गवाही असलियत भविष्यवाणी का आत्मा है। तो ये बात तो हम देख रहे हैं कि असली भविष्यवाणी ये वो होता है जो परमेश्वर के वचन से लेके हम दूसरों को समझाएं कि परमेश्वर के वचन में यीशु कौन है, यीशु क्या करता है, यीशु क्या किया था, क्या कर रहा है और क्या करेगा। यह है भविष्यवाणी का असली आत्मा है। लेकिन आजकल क्या हम देख रहे हैं, ये भविष्यवाणी प्रकट नहीं हो रहा है। आजकल हमारे को ये परमेश्वर ये बहुत ही बड़ा आशीर्वाद दिया है, इसलिए हमारे ऊपर उनका पवित्र आत्मा उंडेल किया, ताकि हम समझ जाए कि उत्पत्ति से लेकर भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य तक क्या दिया गया है, यीशु के बारे में क्या दिया गया है, परमेश्वर का योजना क्या है, उस योजना में प्रभु यीशु क्या करता है, उस योजना में अगर प्रभु यीशु कर रहा है, हम अगर प्रभु यीशु के साथ होना है तो हम क्या करना है, ये सारा गवाही है, ये सारा गवाही, ये है भविष्यवाणी है। और इसको छोड़ के अगर इस ब्रदर के समस्या या उस बहन का समस्या या इस बात या उस शादी, ये सब भविष्यवाणी का गवाही नहीं होता है। तो ये बात तो हम देख रहे हैं, भविष्यवाणी और भविष्यता का मतलब क्या है, परमेश्वर के वचन को सिखाने वाला। देखो आम दौर से अगर भविष्य पवित्र वचन आप पढ़े, कुछ नहीं समझ लेता है, क्योंकि पवित्र वचन ऐसे तरीके से परमेश्वर लिखा कि वो ऐसे ही पढ़ने में हम समझ नहीं सकते, क्योंकि वो चिन्ह के भाषा में है, दृष्टांतिक भाषा में है, यहां तोड़ा वहां तोड़ा होते हुए हम क्या समझें। तो इसको समझने के लिए कोई समझाने वाला होना चाहिए। आपको याद होगा कि फिलिपुस जब वो जा रहा था, एक इथियोपिया मंत्री जा रहे थे अपने रथ में और पढ़ रहा था यशाया का किताब, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं समझ रहा था, तभी उसी वक्त परमेश्वर के पवित्र आत्मा फिलिपुस को कहता है अब जाओ वहां उनसे मिलो, और जाके मिल लेते हैं और पूछते हैं भाई साहब क्या पढ़ रहे हैं, यशाया का किताब, कुछ समझ रहा। सही जवाब दिया, हम कैसे समझें जब तक कोई हमको नहीं बताता है, हम कैसे समझें। यही बात हमने एहसास हुआ जब हमने अफ्रीका गया, अभी पिछले महीने अक्टूबर में अफ्रीका गया, एक ऐसे पहाड़ में गया, ऐसे जंगली लोग के बीच में गया, और उन लोगों को हमारे लिए इंतजार कर रहा था, वो रास्ता इतना बेकार का रास्ता था, कोई गाड़ी भी नहीं चल सकता, गाड़ी ऐसा चले तो ऐसा खेलेगा, ऐसा स्लिप हो जाएगा, ऐसा स्लिप हो जाएगा, क्योंकि वो मट्टी जो है ना ऐसा हलवा की जैसा बना। लेकिन हम गया उधर जाने, वहां बिजली भी नहीं था, उधर क्लास में जाते वक्त हमने ये बात भी पूछा उनसे, मेरे को याद आ रहा है मैंने बोला उस इथियोपिया वाले को जो यशाया की किताब पढ़ रहा था, और जब फिलिपस उनसे पूछा कि आप कुछ समझ रहे हैं, इथियोपिया वाला ने क्या बोला, उसी तरह आप लगता है बहुत दिनों से परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हैं, और मैं अगर आपसे पूछे कि आप कुछ समझे, आप क्या बोलेंगे। मेरे भाई जब तक कोई हमारे को नहीं सिखाता है, हम कैसे समझेंगे, वही उनका अंदरूनी बात थे। तो इसलिए परमेश्वर हमारे को उधर भेजा, ताकि उनको वो समझदारी पाए, ताकि उनके समझदारी के आंख खुल जाए और उसको भी मिल जाए वो बात जो इथियोपिया वाला चाहते थे। और हर एक इस सारा सुसमाचार के युग, हर एक परमेश्वर के बेटे और बेटी जो दिल से पुकार रहा है परमेश्वर से, हमको सिखाओ, हमको ये बात बताओ, हमको राह दिखाओ, हमको रोशनी दिखाओ। तो ये बात तो यहाँ तो देख रहे हैं कि भविष्यवाणी की मतलब, और अभी हमारे को परमेश्वर को कितना बड़ा आशीर्वाद देते हैं कि हम प्रभु यीशु के गवाह हम सभी के सामने हम बोल सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि वो है असली भविष्यवाणी के आत्मा है। अभी एक और उदाहरण देखेंगे पवित्र आत्मा का, वो पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 9वां वचन, पहला कुरिन्थियों 12:9।
किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है।
तो ये अलग 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 वरदान हम देता है, पवित्र आत्मा का वरदान भी होता है, एक एक को एक एक वरदान पाता है। यहाँ तो चंगाई का वरदान, आजकल बहुत से लोगों चंगाई का पीछा कर रहा है, क्योंकि लोग में दुनिया में बहुत से मुसीबत चल रहा है, बहुत से लोगों को बीमारी पड़ रहा है, बहुत से लोगों को हर किस्म के कष्ट में पा रहा है, इसलिए चंगाई की पीछा कर रहा है हम देख रहा है। लेकिन ये चंगाई जो यहाँ दिया गया है और ये जो वरदान पवित्र आत्मा का वरदान, ये सिर्फ शरीर को ठीक कराने का वरदान नहीं, ये दिमाग को भी ठीक करना, क्योंकि थोड़े लोगों को शरीर तो ठीक ठाक रहेगा लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है दिमाग में। तो दिमाग और दिल भी बहुत बीमारी हो रहा है बहुत लोगों को। तो ये दिल का बीमारी, दिमाग की बीमारी, शरीर का बीमारी, हर किस्म के ये सारा बीमारी को ठीक कराने का एक वरदान पवित्र आत्मा से मिलता है। तो ये बात तो हम देखा है, आजकल भी हमारे बीच में बहुत से ऐसे बीमारियों हैं और पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर देता है ताकि हम बहुत से भाइयों और बहनों का कष्ट और बीमारियों, मतलब आत्मिक बीमारियों, मतलब उसके दिल का बीमारियों, उसको ठीक कराने को परमेश्वर एक रास्ता दिखाता है और शक्ति देता है। एक और वरदान हम देखते हैं जो आजकल बहुत ही आम दौर से हम देखते हैं पवित्र आत्मा के संबंध में, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 10वां वचन।
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਆਤਮਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ।
ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ
ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਮਰਥ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਤਮਾਓਂ ਕੀ ਪਰਖ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना।
देखो अनेक किस्म के भाषा, अनेक किस्म के भाषा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत ही बड़ा समस्या था शुरुआत में, कलीसिया की शुरुआत में भाषा, क्योंकि अभी जब प्रभु यीशु ने बोला ये जो वचन हर दुनिया के हर कोने में जाके प्रचार करो बोलते वक्त हर कोने के लोग किस्म किस्म के भाषा कहते हैं ना। जैसे आज अगर आप हम पंजाब आए तो चाहे हम हिंदी में या तो पंजाबी में बोलना है, इसके छोड़ के कोई और भाषा में बात किया तो कोई किसी को नहीं समझेगा। तो उसी तरह हम इंडिया में देखते हैं, हर जगह में इंडिया में कितने कितने भाषा है, लगता है एक 30 के ऊपर भाषाएं है इंडिया में। तो उन दिनों में ये 12 चेलों को ये जिम्मेदारी दिया गया था कि तुम जाओ और सारा दुनिया में ये प्रचार करो ये सुसमाचार। लेकिन सिर्फ प्रचार बोलने में वो काम नहीं होगा, इसलिए पवित्र आत्मा के जरिए से उनके ऊपर में क्या शक्ति आया, भाषा बोलने में। आपको याद होगा एक चेला भारत को आया है कि नहीं, पंजाब में नहीं आया, उत्तर भारत में नहीं आया, दक्षिण भारत में आया, उसका नाम था थोमास। थोमास दो जगह में बहुत ही सेवा किया, तमिलनाडु और केरला में। उस दोनों जगहों में दो भाषा बात करता है, तमिलनाडु में तमिल और केरला में मलयालम। अभी जब थोमा इजराइल से आया तो उनको हिब्रू के भाषा में बात कर रहा होगा, तो उनको कैसे मलयालम और उनको कैसे तमिल बात किया। ये पवित्र आत्मा के जरिए से शायद उसको तुरंत एकाएक आया होगा या सुनते सुनते जल्दी जल्दी सीखने को उसको वरदान मिला होगा, क्योंकि अगर वो मलयालम में या तमिल में बात नहीं करते उनका जो संदेशा है दूसरा को बता नहीं सकता। तो पवित्र आत्मा की शक्ति से इनको मलयालम और तमिल को बात करने में और प्रचार करने में परमेश्वर जरूर उनको इस वरदान दिया होगा। आज भी हमारे बीच में हम लोग जाते हैं, मैं भी नहीं कह सकता कि मैं हिंदी बराबर तरीके से जानते हैं और उसी तरह मैं तमिल अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे को कैसा इस्तेमाल करता है, जितना हम जानता है उसको लेके हमारे को वो बात को आशीर्वाद करके हम आपको समझा सकता है, शब्दों से समझा सकता है, हिंदी में शब्दों में से हम आपको तमिल को समझा सकता है कि संदेश क्या है, कि वचन क्या है। शायद मेरा शरीर का अलग अलग होगा, शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग होगा, शायद शब्दों का इस्तेमाल बराबर तरीका भी नहीं होगा, लेकिन इसमें से महिमा किसको जाता है? मेरे को नहीं आता है। अगर मैं बराबर हिंदी में बात नहीं करता और फिर भी परमेश्वर का सच्चाई आपको प्रकट हो रहा है कि इसका महिमा जाता है परमेश्वर को, मेरे को नहीं है, क्योंकि मैं अपना हिंदी बोलने में संघर्ष हो रहा है। जैसे जैसा वचन में बोलता है ना, जब परमेश्वर के वचन परमेश्वर के सेवक बोलेंगे, वो कैसे कैसे मुंह से और कैसे कैसे जबान में बात करेंगे। वचन में पढ़ लो यशावा 28:11। यशाया 28:28-11।
वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा
परदेशी होठों और विदेशी
भाषाओं।
तो पंजाबी में क्या दिया गया
थतले बुल्ला।
ये बराबर है, ये थतले बुल्ला उधर आना चाहिए हिंदी में। थतले बुल्ला का मतलब क्या है कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में मैं अंग्रेजी में सोच रहा हूँ, अंग्रेजी में सोच रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ मैं हिंदी का शब्द, और जब मेरे मुंह से निकल रहा है थतले बुल्ला से निकल रहा है। यही है इंग्लिश में स्टैमरिंग लिप्स, मतलब तेजी नहीं है, ढूंढ रहा है कि इसका इसको क्या बोलूं। तो भाषा कैसा आ रहा है? तत्ले बुल्ला की तरीके से आ रहा है। तो ये बात तो हम देखते हैं आजकल परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं हम उनके सेवक, ताकि परमेश्वर का सारे सामर्थ उनके ऊपर रहे और परमेश्वर के वचन का महिमा सारे के सारे परमेश्वर को जाए। तो ये बात तो हम देखते हैं अन्य हर किस्म के भाषा के बात करने में। और
आजकल एक नया आंसर दे गॉट द न्यू आंसर, मतलब कि आजकल अगर आप पूछो ना कि थोमा जब इंडिया में आया था तो कौन सी भाषा में बात किया, तो आजकल पास लोगों के पास आंसर ये है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया था, और वो केरला और मलयालम सीख के फिर इधर आया था।
इंग्लैंड इंटरनेट में देख लो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुआ।
वो बोल रहे थे कि पास्टर ने बताया कि वहाँ पे ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यहूदी लोग पहले से उधर थे, तो उनसे पहले वो मिला तो उनसे सारी भाषा का ज्ञान
लिया। सबसे पहला सवाल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कौन से साल में हुआ? ये कब इशू हुआ? सबसे बड़ा झूठ है ये, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की शुरुआत शायद 14th century या 15th century में शुरू हुआ होगा, लेकिन फर्स्ट सेंचुरी में शुरू होने का गुंजाइश नहीं था।
तो मर गए थे वो।
तो वो बोलते हैं कि वो थॉमस का पर्सनल बुक जो है उसमें ये मेंशन है।
आजकल सच्चाई का कोई मर्यादा नहीं हो रहा है, यही पर बहुत ही बड़ा कष्ट हो रहा है। चलो, तो यहाँ तो देख रहा है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा हर किस्म के तरीके से प्रकट करते थे, मतलब पवित्र आत्मा से हर किस्म के काम कर रहे थे, हर किस्म के कर्म कर रहे थे। यही पवित्र आत्मा परमेश्वर जब अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर उंडेल किया, वचन में पढ़ता है कोई हिसाब में नहीं उंडेल किया। देखो वचन में पढ़ लो यूहन्ना 3:34। मतलब माप के नहीं उंडाले, बिना कोई माप से उनके ऊपर उंडेल है। यूहन्ना 3:34।
क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता।
देखो, नाप कर नहीं देता, बिना नाप से उनको दिया है, मतलब परमेश्वर के पुत्र यीशु को मिला वही पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा एक बंदा होता तो एक बंदा दूसरे बंदा के अंदर डाल रहा, ये हो ही नहीं सकता। तो परमेश्वर अपना आत्मा, अपना शक्ति, अपना पुत्र को कितना दिया? नाप को नहीं, मतलब उनको भरा, बिल्कुल भरा। यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं, तो ये यीशु के ऊपर जो मिला पवित्र आत्मा उनसे, मतलब वो जैसा हमने इससे पहले पढ़ा कि पवित्र आत्मा से कर्मों प्रकट हो रहे थे, पवित्र आत्मा से काम हो रहे थे, अभी इस पवित्र आत्मा जो पिता पुत्र के अंदर डाला उसमें से क्या प्रकट हुआ यीशु से, है कि नहीं? तो यीशु से क्या प्रकट हुआ ये बात तो हम मालूम हो जाएंगे जब हम पढ़ते हैं इधर थोड़ा वहां थोड़ा। यशाया 11वां अध्याय पहला और दूसरा वचन, यशावा 11:1-2।
तब यशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा।
देखा, तो यीशु को छह गुण पाया जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। जब परमेश्वर नाप नाप के नहीं दिया यीशु को, इतना पवित्र आत्मा देते वक्त ये छह मुख्य गुण यीशु से प्रकट हुआ, यहाँ हम पढ़ रहे हैं। अभी ये जो सच्चाई आज हमने सुना कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा एक बंदा नहीं है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति है, ये कोई नया शिक्षा नहीं है, ये बहुत पुराना शिक्षा है। आदि के दिन में जब चेले ने विश्वासियों को खत लिखते थे, उस खत में लिखते वक्त देखो जब वो जो क्या बोलते हैं ग्रीटिंग्स को क्या कहते हैं
बधाई,
जब वो बधाई लिख रहे थे, बधाई किसके नाम से लिख रहे थे जरा खत में देख के पढ़ के देख लो। पहला कुरिन्थियों में हम पौलुस के खत में हम देख लेंगे कि पौलुस किसके नाम से बधाई दिया। पहला कुरिन्थियों 1:3
हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
क्या पवित्र आत्मा कोई अनुग्रह और शांति नहीं मिल सकता?
उसका नाम नहीं है।
क्यों पवित्र आत्मा के नाम नहीं लिया? सिर्फ पिता परमेश्वर और यीशु मसीह का नाम क्यों लेता है? क्यों नहीं पवित्र आत्मा का नाम लेता है? क्यों नहीं पवित्र आत्मा का अनुग्रह की बात नहीं हो रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा यहां देख रहा है पवित्र आत्मा एक बंदा नहीं है, इसलिए पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह। इसी तरह पौलुस ने अपने हर खत में शुरुआत किया, जैसे गलतियों में भी आप 1:3 में पढ़ सकते हैं, अभी फिलिपियों में पढ़ेंगे। फिलिपियों 1:2 पहला अध्याय 2
ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ।
ਦੇਖਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਧਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਪੌਲਸ 2 ਕੇ ਨਾਮ ਮੇ ਸੇ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ, ਜਬ ਯਾਕੂਬ ਪੱਤਰ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਯਾਕੂਬ 1:1 याकूब तो है ना ये पंजाबी में, याकूब 1:1
लिख तुम याकूब जेड़ा परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह दा दास हां, अग्गे जो उना 12 गोतां दी जेड़े खिंडे हुए हन सुख सांद होवे।
तो सिर्फ परमेश्वर, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का दास था, क्या पवित्र आत्मा का दास नहीं था? जो याकूब यहां मैं पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का दास क्यों नहीं बोला? क्यों सिर्फ पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का दास क्यों बोला? क्योंकि प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर दो बंदे थे, लेकिन पवित्र आत्मा बंदा तो नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा का दास नहीं बोल सकता है। दोबारा अभी पत्रस के पत्रों में देखेंगे, पत्रस के खत 2 1 पत्रस 1:2
परमेश्वर ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ।
ਦੇਖੀਏ ਯਹਾਂ ਵੀ ਪਤਰਸ ਜਬ ਇਹ ਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਦੋ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। पवित्र आत्मा का नाम ही नहीं लेता है बधाई में, क्यों? क्योंकि उन समयों में ये जो ज्ञान कि पवित्र आत्मा एक शक्ति है उनके पास था, ये नया शिक्षा नहीं है। अभी यूहन्ना के साक्षी देख लेंगे, बहुत ही अच्छा साक्षी है। 1 यूहन्ना का खत 1 अध्याय 3 हिंदी में पढ़ लेंगे और पंजाबी में पढ़ लेंगे।
जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है।
हमारा यह सहभागिता पिता के साथ और उनके पुत्र यीशु के साथ, क्यों नहीं पवित्र आत्मा के साथ? क्यों सिर्फ दो नाम में सहभागिता? सोचना है कि नहीं? हम सोचना है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ सहभाग्यता नहीं कह सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक शक्ति है। जब हमारे ऊपर उंडेल होता है और जब हमारे को पवित्र आत्मा पाता है, तभी हमारा समझदारी काम खोल के हम पहचानते हैं पिता परमेश्वर कौन और प्रभु यीशु कौन। ऐसा नहीं कि हमारा सहभाग्यता पवित्र आत्मा से होता है, ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा एक बंदा नहीं है। तो पंजाबी में पढ़ लो, पंजाबी में पढ़ लो, पहला योहना 1:3।
हाँ, जिन्हों असा वेख्या ते सुनिया है उसका उदा शब्द समाचार तुहानू भी सुनाउंदे हां, कई तुहाडी भी साडे नाल संगत होवे ते साडी जिहड़ी संगत है ओ पिता दे नाल अते ओदे पुत्र यीशु मसीह दे नाल है।
देखो, संगत पिता के नाल और प्रभु यीशु मसीह के नाल। देखो, तो ये बातें पढ़ते हुए हम बहुत ही साफ साफ पता होता है कि ये सच्चाई कोई नया सच्चाई नहीं है, ये बहुत ही पुराना शिक्षा। ये शिक्षा शुरू में से आया, बीच में कुछ न कुछ हुआ, वो बाद में हम देखने वाला है कि कैसा कैसा हुआ। अभी हम देखेंगे कि सिर्फ दो है, पिता और पुत्र यीशु। यीशु ये बात हमारे को बताता है जब वो चेलों को उस आखिरी रात में, जब वो लोग ऊपर भोजन कर रहे थे, जब सभी को अभी डर पैदा होने लगा कि अभी प्रभु को क्या होने वाला है, प्रभु मरने वाला है, हमारे को क्या होगा, इसके बाद हम कहाँ जाएं, तो उस फिक्र के समय में प्रभु यीशु ने एक बात बताया। ये बात में उनको क्या बोलता है, एनकरेज कर, क्यों कहता है,
उनको हौसला
देने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए एक बात किया। उस बात अभी हम पढ़ लेंगे, यूहन्ना 14:1। यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय पहला वचन।
तुहाडा दिल ना घबरावे, परमेश्वर उत्ते नेचा करो अते मेरे उत्ते भी नेचा करो।
क्यों? पवित्र आत्मा के ऊपर नेचा नहीं करना। हिंदी में पढ़ लो।
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो।
क्यों? पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं रखना। सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों यीशु ने बोला कि पवित्र आत्मा पर विश्वास रखो? हम समझ गया ये बात, जरूर पिता के ऊपर विश्वास रखना है, बाद में प्रभु यीशु के ऊपर भी विश्वास रखना है। पहला पिता, दूसरा पुत्र, लेकिन पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास रखना बोले तो उसका मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा कोई बंदा नहीं है, परमेश्वर का शक्ति है। तो हम शक्ति से विश्वास करने कोई फायदा नहीं है, हम शक्ति को पाना है, विश्वास करना नहीं, हम शक्ति को पाना है। ये तो हम हर एक चेले के खत में हम पढ़ता है, ये दोनों नाम से बधाई देने के बाद हर एक खत में है कि आप प्रार्थना करो कि आप ज्यादा पवित्र आत्मा पाओ, ज्यादा पवित्र आत्मा में आप बढ़ना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता परमेश्वर से मांगना है। ये सारे बातें तो हर एक चेले के खत में हम पढ़ता है। तो ये सच्चाई है कि पवित्र आत्मा एक बंदा तो नहीं है, लेकिन हमारे को सवाल आता है आजकल हर एक कलीसिया के अंदर, क्यों ये विश्वास है कि पवित्र आत्मा एक तीसरा रूप परमेश्वर का, क्यों ये विश्वास है कि पवित्र आत्मा एक तीसरा बंदा है परमेश्वर में, क्यों ऐसा विश्वास आ गया, क्यों ऐसा विश्वास सभी के अंदर फैला हुआ, किसके लिए, किस कारण के लिए? क्योंकि हम साफ साफ में परमेश्वर के वचन में आज हमने देखा, यहां तोड़ा वहां तोड़ा, सच्चाई क्या है, ये विश्वास क्यों आया, किस कारण से? कारण ये है कि यूहन्ना के सुसमाचार में 3 अध्याय 14वां 15वां 16वां, ये तीन अध्याय में चार बार प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हुए बोला कि पवित्र आत्मा एक बंदा, जैसा एक बंदा की जैसे शब्दों को इस्तेमाल किया। वो चार वचनों को पढ़ के ये बात को समझ लेंगे और इस बात को हम देख लेंगे, ध्यान करेंगे इसका मतलब क्या है। यूहन्ना पहला 14वां अध्याय 16वां वचन, 26वां वचन, 14, 16, 26।
यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। लास्ट वर्स,
सहायक देगा। यहाँ तो हिंदी में सहायक देगा, पंजाबी में क्या दिया?
पंजाबी में सहायक ही होगा।
हाँ जी, तो जैसा एक पक्ष है।
14 और 16 पढ़ लो, पूरा पढ़ लो।
ठीक,
16 पढ़ लो।
और तुसी मेरा नाम लेके जो कुछ मंगोगे मैं सोई करांगा, ता जो पुत्र विच पिता दी वडियाई होवे। अते मैं अपने पिता तो मंगांगा और वो तुहानू दूजा सहायक बख्शेगा, कई वो सदा तुहाडे संग रहे।
सहायक, 16वां वचन में सहायक, 26वां वचन संदीप।
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा
वह तुम्हें सहायक और
वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा।
सिखाएगा तो भेजेगा, सिखाएगा का मतलब है एक आदमी, एक बंदा है कि नहीं। सिखाएगा, सहायक। दोबारा 15वां अध्याय में 26वां वचन में पढ़ते हैं।
परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा।
गवाही देगा, सहायक। दोबारा 16वां अध्याय 7वां वचन।
तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा।
देखा, अगर मैं ना जाऊं वो सहायक तेरा पास ना आएगा,
परंतु यदि मैं चाहूंगा तो तुम्हारे पास भेजूंगा।
तो देखो, सहायक तो शक्ति तो नहीं कह सकता ना, शक्ति तो सहायक नहीं कह सकता। सहायक का मतलब कोई बंदा, कोई आदमी है कि नहीं। तो यहाँ प्रभु यीशु ये चार जगहों में यहाँ पवित्र आत्मा एक सहायक बोलते हुए बोलने के कारण से आजकल हर एक मसीह को का विश्वास क्या है कि पवित्र आत्मा
बंदा है,
एक बंदा है। अभी इसको हम कैसे समझें? अब तक हमने सीख लिया है कि पवित्र आत्मा बंदा नहीं है,
शक्ति
है। अभी प्रभु यीशु ही खुद बता रहा है एक सहायक है। लगता है थोड़ा उलझन हो रहा है इधर। एक तो हमने सीख लिया यीशु कोई दूसरा सिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे जान जाए, इसका सही मतलब हम कैसे ढूंढे। ये दोबारा हम ये तीन अध्याय 14वां, 15वां और 16वां में हम पढ़ते हुए हम देख लेंगे कि प्रभु यीशु ऊपर के कमरे में एक लंबा भाषण कर रहे थे चेलों के साथ। तो एक लंबा भाषण में शुरू किया हमने देखा, आप घबराहट मत रहो, तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रहो और मेरे ऊपर भी विश्वास रहो, उधर से शुरू किया। उसके बाद क्या क्या शब्दों बात किया, यहां तो हमने देखा चार बार पवित्र आत्मा को सहायक बताया, लेकिन साथ में दूसरे कोई बातें भी बात किया। वो दूसरे बातें हम अभी ध्यान देंगे। पहला 6वां वचन पढ़ेंगे, उसके बाद 7वां वचन पढ़ेंगे, 14वां अध्याय 6 और 7वां।
यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
देखा, इसका मतलब क्या है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, इसका मतलब क्या है, नहीं समझ रहे हम नहीं। अभी 7वां देख लेंगे।
यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है।
ये वचन में क्या बोल रहा है, कि भाई तुम अगर सचमुच मेरे को जानते हैं ना, तुम पिता परमेश्वर को भी जान गया, क्योंकि अगर मुझे देखे तो तुम पिता परमेश्वर देख रहे हैं। अर्थात प्रभु यीशु बोल रहे कि खुद ही वो पिता परमेश्वर। इसलिए हमारा आजकल के मसीहों प्रभु यीशु के बारे में नाम जब लेते थे अपने साथ से, बोलते थे यीशु पिता, यीशु पिता बोलते हैं कि नहीं, यहाँ यीशु पिता,
जीसस बप्पा
यीशु पिता, क्योंकि मानता है कि यहाँ तो यीशु बोल रहे हैं, अगर तुम मेरे को देखो तो कौन देख रहा है, आप पिता परमेश्वर खुद ही देख रहा है। लेकिन यही यीशु उसी अध्याय में 23वां वचन में देखो क्या बोल रहा है।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जे कोई मेनू प्यार करता है वो मेरे वचन की पालना करेगा, ते मेरे पिता मेरा पिता उन्हें प्यार करेगा, अते असी ओदे कोल आवांगे, ओदे नाल वास करांगे।
हिंदी में
यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे।
देखो अभी बोलता है कि दोबारा हम दो हैं। वहां बोला हम एक है, अभी क्या बोल रहा है, नहीं हम दो हैं। तो
यहोशुआ 1:28 इट सेज, यू हर्ड मी से आई एम गोइंग अवे एंड आई एम कमिंग बैक टू यू, इफ यू लव मी यू विल बी ग्लैड दैट आई एम गोइंग टू द फादर, फॉर द फादर इज ग्रेटर देन आई।
नो वी नॉट कम टू दैट पॉइंट। तो यहां तो हम वी आर नॉट टॉकिंग द होली स्पिरिट राइट नाउ। तो यहां तो हम क्या देख रहे हैं, यहां साफ-साफ प्रभु बोला कि आज अगर आप हमको देखा तो पिता देखे जैसे, अभी पूरा बोल रहा है कि हम दो हैं, वहां क्या बोला हम एक है। तो अभी हमको बहुत उलझन हो रहा है, प्रभु एक बार में वैसा मैं एक, मैं और पिता एक हूं, दूसरे जगह में बोलता है मैं और पिता अलग है। तो ये बात देखो कैसे बदलते बदलते जाते हैं। अभी 15वां अध्याय में पढ़ लेंगे कि 15वां अध्याय में क्या बोलता है, 15:1 से पढ़ लेंगे।
सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले।
अभी देखा बोलता है कि मैं एक अंगूर का
वेल
है और मेरा पिता अंगूर का किसान है, यहाँ बताता है। और 5वां वचन में क्या बोलता है, ये अंगूर के वेल का डाली हम हैं। 5वां वचन पढ़ लो,
मैं दाख लता हूँ तुम डालियां हो।
देखो मैं दाख लता हूँ तुम डालियां हो, ऐसे ही बात करते आते हैं, ऐसे बात करते आते हैं। बाद में 16वां अध्याय 16वां वचन में आते हुए आते आते देखते हैं कि एक और बात बताता है। 16:16
थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे,
थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। यहां तक जब पहुंचता है ना, 14वां 15वां 16वां आगे खत्म होता है। यहां तक जब पहुंचता है इतना, तब सुन लिया चेले, वो चेले क्या बोलता है वचन में पढ़ लो, 18वां वचन, मतलब 16:18।
तब उन्होंने कहा, वह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है।
देखो ये सारे बात कर रहा है, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर आप मेरे को नहीं देखेंगे, थोड़ी देर के बाद दोबारा तुम हमको देखेंगे, ये क्या बोल रहा है, हम समझ नहीं पा रहे ये क्या बोल रहा है। तो इसका जवाब खुद ही प्रभु देता है 25वां वचन में पढ़ लो।
मैंने ये बातें तुम,
ये बातें का मतलब क्या है, 14 अध्याय से शुरू होके यहाँ तक, 14 अध्याय के शुरू होके यहाँ तक मैंने ये बातें
तुमसे दृष्टांतों में कही है,
दृष्टांतों से कही है। पंजाबी में पढ़ लो,
मैं गन्ना का अनुबजारता में चाखिया हान
बुजारत मतलब दृष्टांतों में बोली है। दृष्टांतों का मतलब क्या है, प्रभु बोलता है मैं हूँ एक दाक्ष, क्या बोला दादा, दाखला, मैं दाखला अंगूर का दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है और तुम उस दाखलता का डालियो है। तो ये सब मालूम होता है, ये तो सीधा भाषा नहीं है, ये तो सरल भाषा नहीं है, ये तो चिन्ह के भाषा में प्रभु यीशु बात कर रहा है। तो यहाँ प्रभु भी कहता है, यहाँ तक मैं आपको दृष्टांतिक भाषा में बात कर रहा हूँ, आगे पढ़ लो।
परंतु वह समय आता है कि
प्रभु, परंतु वह समय आता है, अभी तक आया नहीं, वह समय आता है जब
मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा।
खोलकर अभी तक मैं आपको खोलकर बात नहीं किया, ये प्रभु बोल रहा है, मैं अभी आपको छिपा छिपा के बात कर रहा हूँ। ये दृष्टांतिक भाषा के जरिए जब हम आपको बात कर रहे हैं, हर एक बात मैं क्या कर रहा हूँ, छिपा छिपा के आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक समय नहीं आया कि मैं तुमको पिता के बारे में खोल के बताए। तो ये बात तो आप समझ रहे हैं अभी, 14वां अध्याय 15वां अध्याय और 16वां अध्याय, जो जो प्रभु यीशु ने बात किया वो सब दृष्टांतिक भाषा में बात किया। और जब वो पवित्र आत्मा एक सहायक बोला, पवित्र आत्मा दृष्टांतिक रूप में सहायक के नाम से प्रभु यीशु ने बताया, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु की प्रसन्नता से बहुत खुश था। प्रभु यीशु जब उनके साथ थे वो सुरक्षित महसूस हो रहे थे, अभी जब यीशु बोल रहे थे कि हम चले जा रहे हैं वो अकेलेपन का महसूस शुरू हुआ, घबराने का शुरू हुआ। अभी इसलिए प्रभु यीशु, अगर सिर्फ मैं एक आत्मा आपके पास भेजेंगे वो क्या उसको कुछ खुशी हो जाएगा, क्या उनको कुछ क्या हौसला बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या बोला, एक और बंदा मैं भेजूंगा मेरे जैसे, लेकिन मैं पहले जाना है, उसके बाद वो आएगा, वो तेरे पास रहेगा, वो तेरे पास रहते वक्त आपको कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं पिता से आया वो बंदा भी किधर से आएगा, पिता से आएगा। ठीक है ठीक है, परवाने एक और आदमी आ रहा है ना तुम्हारे जैसे, परवाने। तो इतना ही वो लोग समझ गया था, क्योंकि उस समय उन लोगों को ये गहरे गहरे दृष्टांतिक बातों को समझने को उनको पवित्र आत्मा अभी तक नहीं मिला। तो ये बात तो यहाँ हम देख रहे हैं। अगर कोई आदमी बोलता है नहीं 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 नहीं, यहाँ प्रभु यीशु ने सरल सीधा भाषा में बात किया, 14वां अध्याय 15वां अध्याय 16वां अध्याय, सचमुच पवित्र आत्मा एक सहायक है, तो तुम उनको बोलो सचमुच प्रभु यीशु सिर्फ एक अंगूर का डाल, क्या बोला, डाक लग रहा है, और पिता परमेश्वर अंगूर का किसान है, और हम सब सचमुच डालियां हैं, पत्ते को छोड़ दो अभी। तो ये बात थोड़े लोग बोलते हैं ना कि ये सरल भाषा है, सीधा भाषा, ये सीधा भाषा नहीं है, ये तो दृष्टांतिक भाषा, और दृष्टांतिक शब्दों को इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में बताया। अभी एक पुराना नियम में एक वचन अभी हम आपको पढ़ने वाला है, जहां आपको बहुत ताज्जुब हो जाएगा कि ये पवित्र आत्मा जो पुराना नियम में परमेश्वर के आत्मा के नाम से हम सीखते हैं, वहां पवित्र आत्मा के नाम में दिया गया है, और वो न सिर्फ ये पिता का पवित्र आत्मा साफ साफ दिया गया है, यशाया 63वां अध्याय 10वां वचन, यशाया 63:10, समझ रहे हैं ना आप लोग, दूसरे बहन अंदर गया, सुन रही है, सुन रही है ना, अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, अगर मैं कोई भी भाषा बोल मैं बता बोलते वक्त आप नहीं समझ रहे तो अजय भाई इधर है पंजाबी में बताएगा। 63:10,
पर आपकी हो गए अते बोले पवित्र आत्मा नु ग्रंथ कीता, वो उल्टा उन्हों दा वैरी बन गया अते आप उन्हों नाल लड़िया।
देखो किसका पवित्र आत्मा, एते है कि नहीं, क्या दिया, किसका पवित्र आत्मा,
दोबारा
पढ़ो,
पर वो आकी हो गए अते ओदे पवित्र आत्मा नु ग्रहण
ओते, उनका पवित्र आत्मा, पिता के पवित्र आत्मा, हिंदी में पढ़ लो,
तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेचित किया।
देखा किसका पवित्र आत्मा? उसके पिता परमेश्वर के पवित्र आत्मा, उसके पवित्र आत्मा यहाँ तो हम देख रहे हैं। अभी आगे पढ़ लो, और भी आश्चर्य की बात आ जाएगा, पढ़ लो, पढ़ते जाओ।
इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और समय उनसे लड़ने लगा। तब
पढ़ लो, आगे पढ़ लो।
तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए, वे कहने लगे, जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल आया वह कहाँ है, जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला?
देखा जिसने उनके बीच अपने पवित्र आत्मा डाला, कितना साफ है देखो, जिसने कौन? पिता परमेश्वर, उनके बीच, उनके कौन है? इजरायली के लोग, उनके बीच में अपने पवित्र आत्मा डाला। कितना साफ और सही तरीके से बता रहा है कि पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर का है। तो ये बहुत ही साफ है, यहाँ तो कोई हमको शक नहीं आता है। लेकिन एक सवाल हमको पैदा होता है कि क्यों हमारा मसीहों के बीच में ये विश्वास है कि पवित्र आत्मा एक इंसान है, एक बंदा है? कारण क्या है? हमने देखा है परमेश्वर के वचन के दृष्टांतिक भाषा सही तरीके से नहीं समझा। एक और बात भी है, थोड़ा अनुवाद करते वक्त ग्रीक के भाषा में एक शब्द है जो हम कह सकता है ही, शी और इट। इसको हिंदी में क्या होता है?
ये मतलब इंसान के
इसलिए देखो उलझन हो रहा है। ही शी और इट मतलब आदमी के लिए भी कह सकता है, पुल्लिंग को भी कह सकता है, स्त्रीलिंग को भी कहता है, और वो न्यूट्रल क्या कहता है उसको, चीजों के लिए, तो चीजों के लिए, तो पुल्लिंग को भी कह सकता है, स्त्रीलिंग को भी कह सकता है, और चीजों के लिए भी कह सकता है। ग्रीक के भाषा पढ़ने वाला समझ लेता है वो वाक्य को पढ़ते वक्त कि ये पुल्लिंग का मतलब है या स्त्रीलिंग का मतलब है या ये तीसरे चीज के मतलब है। अभी मैं आपको उदाहरण देंगे, लेकिन ये अंग्रेजी में प्रकट हो रहा है, पता नहीं हिंदी में प्रकट हो रहा है या पंजाबी में प्रकट हो रहा है, अंग्रेजी में प्रकट हो रहा है। दो बाइबल में, केजेवी बाइबल, एनआईवी बाइबल। केजेवी बाइबल में हम एक वचन देखेंगे, रोमियो 8वां अध्याय 16वां वचन, रोमियो 8:16।
आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं।
आत्मा
आप ही
मतलब ये पुल्लिंग है या तीसरे चीज का?
और आत्मा आप साढ़े आत्मा दे रहा ही काफी जिंदा है, असी परमेश्वर के बालक।
ये पुल्लिंग है या तीसरे चीज का मतलब आता है? Himself. तो ये पुल्लिंग की जैसा का मतलब है। ओके, तो ये बात अगर हम अंग्रेजी में देखे जाए, केजेवी में बोलते हैं द स्पिरिट इटसेल्फ बेयरेथ विटनेस, ये केजेवी में हम पढ़ते हैं। एनआईवी में हम पढ़ते हैं द स्पिरिट हिमसेल्फ टेस्टिफाइज विद आवर स्पिरिट दैट वी आर गॉड्स चिल्ड्रन। तो ये जो फर्क क्यों दिया गया है, क्योंकि मैंने बोला ग्रीक के मूल की भाषा में एक शब्द है होटो। होटो जो है वो पुल्लिंग को इस्तेमाल करते हैं, स्त्रीलिंग को भी इस्तेमाल करते हैं, और तीसरे चीज को भी इस्तेमाल करते हैं। या इसका इसका मतलब हमको आपको दिखा रहा है कि अंग्रेजी में केजेवी में ये वचन में अगर आप पढ़े और एनआईवी में अगर आप पढ़े, इस फर्क को आपको दिखाएगा कि यहाँ केजेवी में द स्पिरिट इटसेल्फ मतलब तीसरे चीज, और एनआईवी में द स्पिरिट हिमसेल्फ मतलब पुल्लिंग के मतलब में दिया गया है। तो ये बात आपको याद में रखना है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। किस कारण से बाइबल में ऐसा ऐसा उलझन हुआ? देखो, आपका हिंदी के बाइबल में और पंजाबी के बाइबल मेरे ख्याल से उतने ज्यादा चोट तो नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर आप तमिल वाले हो और तमिल में पढ़ता है आपको ताज्जुब हो जाएगा कि कितने जगह में पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा जी दिया गया है, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी। जैसे तमिल में बोलता है परिशुद्ध आवि आनवर, आनवर बोले तो जी, तो पवित्र आत्मा जी उस ऐसा दिया गया है। लेकिन आपको हिंदी में और पंजाबी में इतना बड़ा समस्या तो नहीं है मैं मेरे ख्याल से। चलो एक और बात अभी देखना है पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा आजकल सब कैसे पहचानते हैं, अगर एक एक क्या बोलते हैं डाउट को क्या कहता है
कबूतर,
एक कबूतर, एक कबूतर दिखाए तो और सफेद कबूतर दिखाए तो लोग वो पवित्र आत्मा का चिन्ह समझ लेता है। तो क्या पवित्र आत्मा एक सफेद कबूतर, सवाल पैदा होता है क्योंकि हम पवित्र आत्मा का पढ़ाई कर रहा हूं अभी। पवित्र आत्मा क्या पवित्र आत्मा एक सफेद कबूतर है, हम कैसे समझते हैं ये बात? दोबारा हम वचन में जाते वक्त हम ये बात देख लेंगे कि ये पवित्र आत्मा एक सफेद कबूतर नहीं दिया गया है बल्कि सफेद कबूतर की जैसा। देखो सफेद कबूतर का मतलब अलग और सफेद कबूतर के सफेद कबूतर के जैसा अलग है कि नहीं? सफेद कबूतर का मतलब है सफेद कबूतर, लेकिन सफेद कबूतर के जैसा का मतलब क्या है? असली सफेद कबूतर नहीं है लेकिन लेकिन सफेद कबूतर से कोई मिलते जुलते हैं। किस बात में मिलते जुलते हैं ये बात हम समझना है अभी, क्या शरीर में मिलते जुलते हैं या रूप में मिलते जुलते हैं ये अभी हम समझना पड़ेगा। ये वचन में पढ़ लो यूहन्ना पहला अध्याय 32 और 33, यूहन्ना पहला अध्याय 32 और 33।
और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान
आकाश, कबूतर के समान, अंडरलाइन करना हूँ आपके पास में के समान, अगर सम्मान बोले कबूतर नहीं कबूतर के सम्मान। पंजाबी में
यूहन्ना ने यह साखी दे के आख्या के मैं आत्मा नु कबूतर दे न्याय आकाश उतर
कर दे न्याय, मतलब के सम्मान। ये 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 पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु के ऊपर उतारा क्यों बोला गया कि कबूतर के समान और वो भी सफेद कबूतर? क्यों? क्योंकि अगर अगर आप इस दुनिया में पवित्रता का कोई चिन्ह आप ढूंढे या शांति का चिन्ह आप ढूंढे, क्या चिन्ह प्रकट हो जाएगा? कबूतर है कि ना? पाकिस्तान और भारत को जब हम एक दूसरे से जब हम दोस्ती करने का प्रयास करते हैं, ये आपको शायद आपको याद है वाजपेयी के दिनों में क्या छोड़ते थे? कबूतर, सफेद कबूतर। कबूतर का कबूतर एक ऐसा चिन्ह है जो शांति का मतलब है, जो पवित्रता मासूमियत का एक मतलब है। अभी प्रभु यीशु के बारे में वचन में हम पढ़ते हैं इनको ना पाप था ना बुराई था ना कोई भी ऐसा चीज था जो मैल हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल पवित्र था प्रभु यीशु मसीह। तो बिल्कुल बिल्कुल पवित्र प्रभु यीशु मसीह बोलते हुए ये बिल्कुल बिल्कुल पवित्रता का जो को जो विवरण कैसे दूं? सफेद कबूतर। अभी मेरे ख्याल से ये मेरा कल्पना है, अभी सोच लो अगर वो अच्छा लगता है तो आप ले लो। मेरा कल्पना क्या है, जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, यहाँ बपतिस्मा यूहन्ना कहता है कि सफेद कबूतर के समान उसके ऊपर आया, तो कबूतर जब उतारता है उसके पंख ज्यादा जोर ऐसा लगता है, ऐसा आता है ना, तो जब वो नीचे उतारा प्रभु यीशु के ऊपर एक रोशनी उतारा और वो सफेद रोशनी में ऐसा हिलने का जैसा उसके ऊपर आया, तो वो ऐसा लगा देखते देखते कैसा लगता है, अरे वो कबूतर के समान सफेद कबूतर आए यीशु के सर के ऊपर आया। तो ये यीशु का अनुभव हुआ होगा ये मेरे ख्याल से, क्योंकि प्रभु यीशु के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया प्रभु यीशु पवित्रता प्रभु यीशु में जरा भी पाप नहीं था। प्रभु यीशु के अंदर ये पवित्र आत्मा एक पवित्र काम करेगा। लेकिन यही पवित्र आत्मा जब कलीसिया जब चेलों के ऊपर आया पेंटिकॉस्ट के दिन में, वो दिन में ये पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में नहीं आया। क्यों? क्योंकि कबूतर का सम्मान पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का शक्ति यीशु के ऊपर जब उतार रहा था वहां चिंता एक कबूतर का सम्मान, लेकिन जब चेले के ऊपर उतारा वहां कैसे सम्मान था? अलग चिंता। ये वचन पढ़ लो अलग चिंता, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय दूसरा और तीसरा वचन, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय दूसरा और तीसरा वचन।
एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा और उन्हें आग की सी जीभे फटती हुई दिखाई दी।
आग की सी
जीभे फटती
जीभे, तो आग की सी का मतलब है सचमुच आग नहीं, आग की जैसे, सचमुच आग नहीं, आग की जैसे जीभे एक एक सर के ऊपर जाके बैठा। तो सचमुच आग नहीं, आग की जैसे मतलब पवित्र आत्मा का रूप, मतलब नजर को देखने का रूप क्या था? आग के जैसे जीभे एक एक के सर के ऊपर जाके बैठा। ये बात तो हम देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पवित्र आत्मा जब चेलों के ऊपर उतारा और जब परमेश्वर ने उंडेल किया, यहां तो पवित्र आत्मा का जो कर्म और जो जो बात चेलों से प्रकट हुआ उस चिन्ह में से हम मालूम होना चाहिए। उस चिन्ह क्या था? आग की जैसे जीभे, जीभ नाक, नाक मतलब जीभ ना,
जीभ जीभ
ये नाक अलग ना, नाक
नाक ये
इसलिए तमिल में नाक तो जीभ जीभ, माफ कीजिएगा ज्यादा बात करे भाषा में बात करे तो ऐसे उलझन हो जाता है। तो ये जो जीभ आग की जैसे जीभे का मतलब क्या है? ये पवित्र आत्मा जब चेले के ऊपर आया, खास करके वो 120 वाले के ऊपर आया, उसको क्या दिया? पहला उसको बोलने का शक्ति दिया और भाषाओं का वरदान दिया। और ये बोलने का भाषा आग, आग का मतलब उनके अंदर एक ऐसा जोश और ऐसा एक एक बल आ गया और ऐसा एक बहादुरी आया कि पहला उनके पास नहीं था। पहला वो बहादुर के ऑपोजिट
कमजोर थे,
बिल्कुल डरावट के आत्मे में थे, डरपोक के के रूप में थे। लेकिन जब परमेश्वर के आत्मा उनके ऊपर आया वो डरपोकता बदल के बहादुरता में वो प्रकट हुआ। तो ये बहुत ही बड़ा बात तो हम देख रहे हैं। तो ये पवित्र आत्मा का जो प्रकट हुआ चेलों के ऊपर, तो पवित्र आत्मा ना ही एक कबूतर है और पवित्र आत्मा ना ही आग के जीभ। पवित्र आत्मा के रूप मतलब पवित्र आत्मा को देखने के रूप मतलब देखने वाले, यहूना बपतिस्मा यहूना देख रहा था यीशु के ऊपर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, तो कुछ ना कुछ देखना है ना, तभी तो मालूम हो जाएगा कि कुछ ना कुछ हो गया अभी यीशु के ऊपर। तो बपतिस्मा यहूना को देखने के लिए क्या कैसा लगा? एक कबूतर की जैसा, सफेद कबूतर की जैसा। लेकिन बाकी जो चेलों जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, उनके नजर को कैसा आया चिन्ह? ये आग के जैसे जीवों। तो इन इसमें मालूम हो जाता है ये पवित्र आत्मा ना एक कबूतर है और ना आग का जीव है, जैसे आग के जीव के जैसे पवित्र आत्मा कबूतर के सम्मान। ये बात तो हम समझ गया। अभी हम देखेंगे थोड़े वचनों जहां हम पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा बोलते हैं, पवित्र आत्मा बोलते हैं। अगर पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति है, अगर पवित्र आत्मा सिर्फ एक सामर्थ है, कहां से आता है जुबान? एक बंदा के को ही जुबान होता है ना, यहां तो पवित्र आत्मा बंदा नहीं है तो उसका जुबान किधर से आता है? लेकिन वचन पढ़ेंगे पहला कि ऐसा वचन है कि पवित्र आत्मा ये बोला वो बोला, ये बोलता है वो बोलता है, पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम से ज्यादा वचन हम पढ़ लेंगे। 13वां अध्याय दूसरा वचन, प्रेरितों के काम 13:2। बीच में अगर आप कुछ बोलना है तो बोल लीजिए, ऐसा कुछ बात नहीं है।
या ए प्रभु दी पात्मा कर देते वर्त रखते सुन, तब पवित्र आत्मा ने किया कि मेरे लिए बर्नबास से सुलूस ने उस काम दे ले वखरा करो।
जो साफ साफ तरीके से पवित्र आत्मा बात कर रहा है, बर्नबास साउल को अलग कर दो, मतलब हुकुम भी दे रहा है पवित्र आत्मा, साफ साफ उसको बोलने की हुकुम और आवाज प्रकट हुआ। 10वां अध्याय प्रेरितों के काम 19वां वचन, 10:19 प्रेरितों के काम 10:19 हिंदी में पढ़ लो।
पत्रस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख तीन मनुष्य तेरी खोज में है।
देखो पत्रस को पवित्र आत्मा कहते हैं, देख तीन मनुष्य नीचे आपके खोज में हैं। पढ़ लो।
या पत्रस उस दर्शन की सोच विच पिया होया सी ता आत्मा ने नु आख्या, देख तीन मनुष्य तेनु पालदे हन।
देखा तो बात कर रहा है, तो पवित्र आत्मा साफ साफ बात कर रहा, आवाज से प्रकट हो रहा है। 16वां अध्याय प्रेरितों के काम 6 वचन,
वो फ्रिगिया और गलातिया दे इलाके विच दी लंघ गए, क्यों जो पवित्र आत्मा ने असिया विच वचन सुनाने से मना किया।
देखो पवित्र आत्मा मना कर रहा है, उधर मत जाओ। तो पवित्र आत्मा को क्या है? पवित्र आत्मा का एक शब्द है, पवित्र आत्मा वाणी है, पवित्र आत्मा हुकुम डालता है, बोलता है। तो कैसे एक शक्ति को कैसे बात कर सकता है, शक्ति को कैसे हुक्म दे सकता है, ये मेरा हमारे को क्या होता है, सवाल पैदा होता है। एक और वचन पढ़ लेंगे और उसके बाद ये बात को देख लेंगे। एक और जगह में है प्रेरितों के काम 20:23, वो हम नहीं पढ़ेंगे अभी, वो आप आपके घर में जाके आप पढ़ सकते हैं। ये वचन पढ़ लेंगे जो पौलुस ने लिखा, 1 तीमोथियस 4:1।
परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है,
देखो स्पष्टता से कहता है, तो पौलुस साफ साफ लिख रहा है कि पवित्र आत्मा कहता है। तो पवित्र आत्मा का एक वाणी है, स्वर है, पवित्र आत्मा हुक्म देता है, पवित्र आत्मा बात करता है, एक शक्ति को कैसा बात कर सकता है। अगर आपके ये जो शिक्षा किसी से लेके जाए, ये सवाल आपसे पूछ लेंगे, इसलिए मैं ये सब अंदर डाल दिया इधर, ये सवाल पूछ लेंगे। तुम बोलता है चलो आप बहुत से वचनों हमको दिखाया, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शक्ति है, परमेश्वर का वचन है, लेकिन ये वचन क्या बोलता है, शक्ति को कैसा आवाज, शक्ति को कैसे बोल सकता है? ये बात को विवरण देना तो एक उदाहरण देना है। जैसा हमारा भारत में अभी पिछले साल में इलेक्शन हुआ और कौन सा गवर्नमेंट आ गया, यूपीए गवर्नमेंट आया, लेकिन यही यूपीए गवर्नमेंट पहला आया कब, 5 साल पहले, है ना। 5 साल पहले जब पहला आया, बीजेपी को लड़ के जय पाने के बाद जब गवर्नमेंट में सरकार बना, तो यूपीए गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री का पद किसको आने का गुंजाइश था,
सोनिया
गांधी। लेकिन बहुत ही बड़ा उलझन हुआ, अरे वो इटाली वाली कैसे इंडिया का नेतृत्व कर सकते हैं। तो बहुत दिनों से कुछ उलझन चल रहा था, उसके बाद सोनिया गांधी आके बात किया, बोला मेरे अंदरूनी आवाज मेरे को कहता है ये पद मत रखो, ये प्रधानमंत्री का पद मनमोहन सिंह को दे दो। क्या बोला? अंदरूनी आवाज। क्या अंदरूनी आवाज था सोनिया गांधी का? आपको और मेरे का अंदर क्या अंदरूनी आवाज है? हिंदी में कॉन्शियंस को क्या कहता है?
अंतरात्मा।
तो अंतरात्मा बोलते हैं, है कि नहीं? अंतरात्मा एक अलग बंदा है। अंतरात्मा एक अलग बंदा है। मेरा और मेरा अंतरात्मा अलग अलग दो बंदा है। तो अंतरात्मा एक शक्ति है जो परमेश्वर हमारे अंदर डाला ताकि हमको बताए कि कौन सा मोड सही और कौन सा मोड गलत है कि नहीं। तो ये अंतरात्मा बोलता है। एक हरेक आदमी को जब जो भी बुरा के बुरा आदमी भी जब बुराई करता है उसके अंतरात्मा बोलता है तुम कैसे जानवर है, क्यों ऐसा कर रहा है। अंतरात्मा बात करते ही नहीं, जब बोल लेते हैं गुस्से में बोल लेते हैं अंतरात्मा क्या बोलते हैं, इसने तो बोलना नहीं चाहिए था, क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया, माफी मांगो, है कि नहीं अंदर बोलते हैं। तो ये अंतरात्मा ऐसे हमको बात करते हैं। अगर अंतरात्मा दुनिया वाले को बात कर सकते हैं, अगर पवित्र आत्मा हम पाते हैं और भी ज्यादा चलाने का हुकुम कौन देगा, पवित्र आत्मा देगा। और खास करके जब शुरुआत के दिनों में जब कलीसिया स्थापित होने लगे और एक एक चेले एक एक जगह को जाने लगा तभी पवित्र आत्मा का चलाना का शक्ति बहुत जरूरी थे। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदरूनी एक आत्मा की बात जैसे उसी तरह पवित्र आत्मा की चाल चलाने मतलब गाइडेंस मतलब चलाने की जो स्वर और चलाने की जो वाणी हर एक चेले और अपोस्तलस को ता हम देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एक शक्ति का आवाज नहीं है हमारे अंदर की ये अंतरात्मा, ये हमारा शक्ति है हमारा अंदर है, ये अंतरात्मा हमसे बात करते रहते हैं। थोड़े लोग अपने अंतरात्मा को मार डालते हैं, चुप मत बात कर मेरे को जानता मैं क्या करना क्या नहीं करना तुम चुप, ऐसे थोड़े लोग रिपोर्ट करते हैं अपने अंदर के अंतरात्मा क्या करता है, ऐसे मार डालता है खून करता है, वो बहुत ही कठोर आदमी बदल जाते हैं। लेकिन ये अंतरात्मा हर एक के अंदर परमेश्वर डाला, ये अंतरात्मा बोलते हैं, ये एक शक्ति है। अगर सिर्फ अंतरात्मा बात करते हैं सोच लो अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेल करे क्या पवित्र आत्मा बात नहीं करेगा, क्या पवित्र आत्मा रास्ता नहीं बताएगा, क्या पवित्र आत्मा सही और गलत का फर्क आप नहीं बताएगा, जरूर बताएगा और भी गहरे आवाज में और भी विस्तृत रूप में बताएगा कि ये तुम कर रहे हैं ये वचन के जरिए नहीं है। देख लो वो वचन पौलुस ने कहा तुम झूठ मत कहना है, कलोसियों 3:9 में कहता है झूठ एक से दूसरे से झूठ मत कहना है, और आप आदत से वही पुराना आदत से झूठ बोल रहे हैं, अभी बोलेगा कि नहीं, पवित्र आत्मा बात करता है। तो ये बात तो हम कोई खास बात नहीं है, पवित्र आत्मा जरूर बात करेगा क्योंकि पवित्र आत्मा वो अंतर आत्मा के जरिए कि जैसे हमारे को चलाने वाले मतलब गाइड को क्या कहते हैं, हमको चलाना चालक मार्गदर्शक की जैसे है होगा कि हम देख रहे हैं। अभी एक और वचन हम देख लेंगे जो बहुत लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया है पवित्र आत्मा के बारे में, इसको भी हम देखना है, इसको भी सही मतलब हम देखना है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 वचन, दूसरा कुरिन्थियों 3:17
प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है।
ये अच्छा अनुवाद है, बहुत अच्छा अनुवाद है, हिंदी पंजाबी में
हुण ओ प्रभु का आत्मा है और जिथे किथे प्रभु का आत्मा है उथे ही आजादी है।
ये वचन आपने कभी पढ़ा इससे पहले, आप क्या समझ रहे हैं इस वचन से, प्रभु ही पवित्र आत्मा है, क्या मतलब समझ रहा है प्रभु ही आत्मा है का मतलब क्या है, संदीप क्या समझ रहा था इसे इस वचन के बारे में पहले,
प्रभु के तीन मतलब
प्रभु ही आत्मा है क्या क्या आता है, प्रभु ही है प्रभा प्रभु
प्रभु तो आत्मा है,
प्रभु तो आत्मा है, अंग्रेज में क्या आता है मालूम,
द लॉर्ड इज द स्पिरिट,
प्रभु ही सॉरी अंग्रेज में क्या आता है प्रभु है वो आत्मा, अंग्रेजी में द लॉर्ड इज दैट स्पिरिट, ऐसा आता है, प्रभु ही वो आत्मा। तो लोग क्या सोच रहा है कि क्या बता रहा है, देखो प्रभु यीशु ही पवित्र आत्मा, इस वचन से सिखाता है। लेकिन इस वचन का मतलब, सही मतलब क्या है, प्रभु वह आत्मा है और प्रभु का आत्मा जहां है वहां आजादी है।
आजादी
क्या मतलब है, ये थोड़ा समझने को थोड़ा मुश्किल है। क्यों? पत्रस बताता है हमारे को कि पौलुस के जो खत समझने में आसान नहीं है। पढ़ लेंगे दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 16 वचन, दूसरा पत्रस 3:16, दूसरा पत्रस 3:16।
जिवें उन अपनियां सारियां पत्रियां विच उन्हां दे विखे लिखिया है अते उन्हां विच कईयां गल्लां दा समझना औखा है जिन्हां नूं कच कड़ अते डोलन वाले लोग अपनी बर्बादी लई मरोड़दे हन जिवें ओह होरनां लिखतां नूं वी करदे हन।
देखा, बहुत लोग बराबर से नहीं पढ़ता है, बराबर नहीं समझ, बराबर नहीं समझता है और बराबर दूसरों को नहीं समझाता है और अपने नाश को की तरफ से लेके जाता है। हिंदी में पढ़ लो।
वैसे ही उसने अपनी सभी पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके।
देखो अनपढ़ एक तरफ, परवाह नहीं, अनपढ़ तो अनपढ़, लेकिन चंचल, अनपढ़ और चंचल लोग क्या किया,
उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं।
देखो खींच तान कर मतलब बदलता है, सही मतलब को नहीं समझता है, सही मतलब को नहीं पहचानता, सही मतलब को नहीं सिखाता है, उसको खींच बदलता है, उनकी जैसे मतलब देता है, उनकी जैसे मतलब देके दूसरे को उनकी जैसे मतलब को सिखाता है और अपने नाश, मतलब जो काम कर रहा है वो नाश को जाएगा, वो जीवन को नहीं जाएगा, अपने नाश को लेके जाता है। तो यहां तो हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, यहां तो पौलुस के लिखा हुआ बात, दूसरा कुरिन्थियों 3:17 दो भाग है। पहला भाग है प्रभु है आत्मा, ये पहला भाग है। दूसरा भाग है प्रभु का आत्मा जहां है वहां आजादी है, ये दूसरा भाग है। दो भाग अगर हम बंटवारा करते हैं, पहला भाग हम देखेंगे प्रभु है आत्मा, इसका मतलब क्या है। पौलुस कहता है एक बात सुन लीजिए, एक बात समझ लीजिए, हमारा प्रभु यीशु जो हम मामस में देखा, जो हम मामस में मिला, जो हम वापस मामस में उनके साथ बहुत सी समय भी गुजारा, अभी वो प्रभु यीशु अभी मामस नहीं है, अभी वो प्रभु यीशु आत्मा है। ये बात पौलुस यहां बता रहा है, वचन में पढ़ लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई। पहला पत्रस 3:18 वचन, पहला पत्रस 3:18,
इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए, और शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया।
समझा, वो शरीर के भाव में वो मार डाला गया, लेकिन अभी जब जी उठा कौन सी भाव में जी उठा, आत्मा के रूप में। अभी वो उसका शरीर अभी मामस नहीं है, उसके शरीर अभी आत्मा है। ये बात पत्रस अचेले हमारे को बता रहा है कि नहीं, अभी इस बात पौलुस भी बताता हमारे को। हमेशा अचेले के बातों को आप ढूंढना है, जब कभी कोई शिक्षा प्रकट होता है, कोई भी शिक्षा प्रकट जब वो होता है, हर एक चेले उस शिक्षा के बारे में हमारे को सिखाता है। यहां तो पत्रस बोलता है मामस में मार डाला, लेकिन जब जी उठा मामस में नहीं जी उठा, कैसे जी उठा, आत्मा में। इसी बात अभी
प्रे है, चेले पौलुस बता रहा है, दूसरा कुरिन्थियों पांचवा अध्याय सोलहवा वचन, दूसरा कुरिन्थियों पांच सोलह,
अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे।
पापा जाबी में पढ़ लो,
तो असि हूं तो किसी नु शरीर के अनुसार नहीं जानते हाँ, भावे असा मसीह नु शरीर के अनुसार जाने है, पर हूं उस तरह ओह उन्हें फिर नहीं जानते।
क्या समझा? अगर हम अब तक प्रभु यीशु के बारे में अपने शारीरिक रूप से हम स्मरण कर रहे थे, हम सोच रहे थे, एक बात सुन लो, आज से प्रभु यीशु उस शारीरिक रूप से हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि जैसे पत्रस कहा वो मामस में मार डाला और आत्मा में जी उठा। तो ये ही पौलुस बोल रहा है, प्रभु है आत्मा, क्योंकि प्रभु ही हमारे को सिखाया पिता परमेश्वर के बारे में, क्या बोला, परमेश्वर एक आत्मा है, यूहन्ना 4:24 में प्रभु परमेश्वर एक आत्मा है, और जो कोई परमेश्वर का आराधना करना है वो सच्चाई में और आत्मा में करना चाहिए। तो यहाँ तो बहुत ही साफ तरीके से प्रभु पौलुस बता रहा है कि प्रभु यीशु वो आत्मा है, मतलब आत्मा का मतलब है उनके अभी रहने का रूप, अभी वो मामस शरीर के रूप में नहीं है, क्योंकि वो मामस शरीर किस लिए दिया है? नहीं नहीं नहीं, वो शब्द मेरे को चाहिए, किस लिए दिया? हिंदी में क्या बोलता है? चुड़ौती के रूप में दिया। आपको याद है परमेश्वर के जो का दिव्य नीति देखे तो क्या पूछता है, एक जिंदगी के लिए क्या देना है?
जिंदगी
देना है। कौन सा जिंदगी गया? आदम के परिपूर्ण मानसिक जिंदगी चला गया। तो अभी इस जिंदगी अगर बचाना है कोई और अपना परिपूर्ण मानसिक जिंदगी इनके लिए क्या करना है? देना है, जिंदगी के लिए जिंदगी देना है। तो ये छुड़ौती प्रभु यीशु ने किया अपने मानसिक जिंदगी, अपने मानसिक जिंदगी को मौत पाने के लिए उनको काबिल नहीं था, क्योंकि वो कोई पाप नहीं किया, क्योंकि पाप का
पाप का दंड मृत्यु,
दंड नहीं, एक अच्छा शब्द है उधर,
पाप की मजदूरी।
पाप का मजदूरी मतलब जब आप पाप करता लेके जाओ मजदूरी, बिना मजदूरी से मत पाप करो, तो पाप का मजदूरी है मौत। प्रभु यीशु ने पाप नहीं किया इसलिए उसको मौत देखने के सवाल ही नहीं था, लेकिन मौत ही देखा, किसके लिए? उनके पाप के लिए नहीं, सारे दुनिया के पाप के लिए, खास करके पहला मनुष्य के पाप के लिए, आदम के पाप के लिए। तो आदम के पाप के लिए प्रभु यीशु ने क्या किया? अपना मामस के जीवन दिया, ये छुड़ौती है। तो इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मरा मामस में लेकिन जी उठा आत्मा में, क्योंकि वो मामस का जिंदगी बेंट में दिया आदम को, और आदम के जरिए से सारा मनुष्य की जाति को जाएगा वो मामस, मतलब जी उठना, जी उठा, पुनर्स्थान, सभी मनुष्य को क्या मिलने वाला है? पुनर्स्थान। किस लिए? क्योंकि मौत आदम से आया, और जब वो आदम अभी चुड़ौती मिला, उस चुड़ौती ना सिर्फ आदम, वो चुड़ौती सारे खानदान को मिलेगा, चाहे वो कौन भी हो, चाहे वो क्या भी हो, सारे के सारे को चुड़ौती मिलेगी। ये परमेश्वर का जो शिक्षा जो हम परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं। तो ये है प्रभु आत्मा है। अगले भाग है परमेश्वर प्रभु के आत्मा जहां है वहां आजादी है। ये आत्मा का मतलब अलग, जैसे आपने पढ़ा शायद आपके ये सच्चाई के पढ़ाई में आपने देखा होगा, आत्मा के एक मतलब है एक जीवन, जैसे परमेश्वर का जीवन, जैसे स्वर्ग दूतों का जीवन, वो आत्मिक जीवन है। लेकिन एक और मतलब है,
तीन मतलब आत्मा,
आत्मा वो आत्मा कोई अनदेखी शक्ति, तीन मतलब है ब्रदर ने आपको सिखाया। पहला सांस, जो सांस हमको मिलता है ना उनके कारण से ये शरीर को जीवन मिलता है, लेकिन कोई अपना सांस नहीं देख सकता है, लेकिन वो सांस से कितना शक्ति है आपको साफ साफ जानते हैं। दूसरा मतलब है ये जो आत्मा दिमाग
मन
दिमाग मन बोलते हैं
नबूकदनेज़र का
मन 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 मन, तो मन मन का मतलब है माइंड और दिमाग का मतलब है ब्रेन। तो चलो दूसरा मतलब है मन, मन जो है हम हमारा मन किधर है हम पूछे तो हम इधर बोलते हैं, मतलब हमारा दिमाग मन नहीं है, सिर्फ दिमाग रहते हुए हमको मन बराबर है हम नहीं कह सकते। बहुत से लोग दिमाग है लेकिन मन खराब हो गया है, जैसे जैसे हम अस्पताल में जाके देख पागलखाना जाते हैं, पागलखाना में लोग हैं उनके खोपड़ी खोल के देखे तो वहां दिमाग है, भेजा बोलते हैं ना भेजा फ्राई, वहां भेजा है लेकिन उसका भेजा बराबर भेजा में मन मिले हुए नहीं है। मन क्या हो गया, मन तो खराब हो गया है, मन अनदेखी शक्ति है जिसको हमारा मानसिक जीवन चलाता है, हम क्या सोचना है हम क्या बनना है हम क्या करना है हम क्या जवाब देना है हम इसको कैसे समझाना है वो सब किससे आता है, मन से आता है। तो या तो देखते हैं दूसरा मतलब मन, लेकिन तीसरा मतलब प्रभु यीशु हमको बताया मन का मतलब, यूहन्ना 6:63 में बताया कि मैं जो वचन आपको बोल रहे हैं वो वचन आत्मा है, मतलब शब्द, शब्दों में से बहुत शक्ति है, शब्दों में आदमी बदलता है और आदमी क्रोधित बन जाता है, सिर्फ शब्दों में, शब्द किसी को नहीं देख सकता है लेकिन शब्द में इतना शक्ति है, जिंदगी को बन सकता है जिंदगी को बिगाड़ भी सकता है, ऐसा शक्ति है शब्दों। तो ये शब्द प्रभु यीशु बोले हुए शब्द ये आत्मा है, इसलिए पौलुस बोल रहा है प्रभु की आत्मा जहां है, प्रभु यीशु के शब्दों जहां है, प्रभु यीशु के उपदेश जहां है, प्रभु यीशु के शिक्षा जहां है वहां क्या है आजादी है। क्यों आजादी है, क्योंकि प्रभु यीशु के बोली परमेश्वर के दिए हुए शब्द बात किया है और परमेश्वर के शब्द में क्या बोलते हैं, परमेश्वर के शब्द सच्चाई है और सच्चाई के बारे में हमने क्या सीखा, तुम शब्द तुम सच्चाई जान लोगे और सच्चाई तुमको आजादी करेगा। आजादी किससे करेगा, शैतान का हर एक डोंग हर एक जूट हर एक अंधेरापन हर एक से आप क्या होता है आप आजादी हो जाए क्योंकि सच्चाई आप समझ लेंगे। लेकिन वो सच्चाई कहाँ है, प्रभु के आत्मा में प्रभु के शब्द में प्रभु के वचन में, ये बात तो हम देख रहे हैं, ये तो आप नोट्स में आप पढ़ सकते हैं जहां एक एक वचन एक एक जो कारण जो मैं आपको दिया है वहां दिया गया है। अभी एक एक और बात हम देखना है पवित्र आत्मा के बारे में, जहां थोड़ा शक है कि पवित्र आत्मा अगर शक्ति है तो क्यों ऐसा दिया गया है पवित्र आत्मा के बारे में, एफेसियों 4:4 तीसरा वचन 30वां वचन 4:30
परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है।
शोकित 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 मतलब शोकित जो है हम चीज के लिए नहीं कहते हैं, हम शक्ति के लिए नहीं कहते हैं, शोकित उनको कहता है जिसको दिल है कि नहीं, तो परमेश्वर के आत्मा शोकित ना करो, इसको दिल दुखना नहीं,
निराश मत करो,
निराश मत करो। तो ये वचन डाल के बोलते हैं ब्रदर तुम बोल रहे ये शक्ति है, एक शक्ति को कैसे निराश कर सकता है, एक शक्ति को कैसे शोकित कर सकता है, ऐसा पूछते हैं। चलो इसका भी सवाल का जवाब है, क्यों यहां पौलुस इधर बोल रहा है, क्योंकि यही आत्मा पहले परमेश्वर दिया और पहले ही मिलने वाला इस आत्मा को क्या किया, शौपित किया। शौपित किया का मतलब क्या है, निराश किया, निराश आत्मा को नहीं हुआ देने वाले के हुआ। वचन में पढ़ेंगे ये बात, यशाया 63वां अध्याय 10वां वचन, 63:10।
पर वो आखी हो गए अते ओदे पवित्र आत्मा नु ग्रंज कीता।
आखी हो गए, आखी का मतलब रिबेल्ड, और अपने पवित्र आत्मा को ग्रंज कीता। ग्रंज का मतलब ग्रीव्ड, ग्रीव्ड हिंदी में पढ़ लो,
खेदित किया, उसकी पवित्र आत्मा को खेदित किया,
खेदित, खेदित किया। लेकिन क्या शब्द आपने पढ़ा एफेसियों में? शौकित, शौकित, शौकित और खेदित दोनों एक ही है ना, देखा। तो अगर ये शब्द वो शब्द दोनों एक ही इस्तेमाल किया होता, कोई भी प्रॉब्लम और शक नहीं होता ना। यहाँ खेदित, वहां शौकित, यहाँ वहां शौकित, यहाँ शौकित, वहां केदित, यहाँ केदित डाला गया होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को शौकित करना, पवित्र आत्मा को केदित करना का मतलब है पवित्र आत्मा देने वाले को शौकित मत करो, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके ऊपर दया करके, कृपा करके आपको देता है उनका, आपको देता है उनका आत्मा। अगर आप उनका, अगर आप उनकी आत्मा को पाने के बाद उसके लिए आप काबिल ना बन जाए तो कौन निराश हो जाएगा? तो पिता परमेश्वर निराश हो जाएगा। तो ये बात, तो इसका मतलब ये है, ये तो बहुत साफ उदाहरण दिया गया है। आखिरी बात, बात तो हम देख लेंगे, लूका 12वां अध्याय 10वां वचन जो हम पहले पहले पढ़ लिया, जहां दिया गया कि पवित्र आत्मा के बारे में अगर आप कुछ बोले आपको माफ नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर पुत्र के बारे में बात करें तो आपको माफ मिलेंगे। इसका मतलब पवित्र आत्मा बड़ा और पुत्र कम, इसका मतलब क्या है? पढ़ लेंगे लूका 12।
तो ये कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध गल करे उन्हें माफ किया जाएगा, पर जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुफर बके उन्हें माफ ना किया जाएगा।
तो अगर ये वचन आप पढ़ लेते तो आप क्या समझ आता है? तो पवित्र आत्मा बड़ा है और प्रभु यीशु कम, लेकिन अभी आप समझ गया है पवित्र आत्मा परमेश्वर का शक्ति है। तो परमेश्वर के शक्ति के विरुद्ध बात करना के मतलब क्या है? पवित्र आत्मा के शक्ति को विरुद्ध में बात करना का मतलब क्या है? आपको जानता है जैसा जैसा सऊदी अरेबिया में अगर आप जाते तो वहां क्या करते हैं? अगर बाइबल आपके आपके लगेज में होते बाइबल उठा के फेंक देते हैं। उसी तरह इंडिया में कभी कभी गुस्सा हो जाता है आरएसएस क्रिश्चियंस के ऊपर। ये क्रिश्चियंस के दोष है, ये आरएसएस का दोष नहीं है। मैं बताऊंगा बाद में ये क्या हो रहा है, नाटकबाजी हो रहा है इधर, इसलिए उसको उसको गुस्सा होता है। तो आरएसएस को गुस्सा होता है, ये सऊदी अरेबिया वाले को गुस्सा होता है। ये इसका मतलब है वो जैसा दिखाता है कि पुत्र के विरुद्ध है, यीशु के नाम के विरुद्ध है, यीशु के प्रचार के विरुद्ध है, ऐसा लगता है। लेकिन वचन में कहता है अगर वो लोग ऐसा कहता करता है उसके लिए माफ है, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बात करता है उसके लिए माफ नहीं। इसका मतलब क्या है? अभी हम समझ गया, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शक्ति, हम उस वो पाता है पिता परमेश्वर से। तो किसके पास पवित्र आत्मा होता है? पढ़ लो पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 वचन,
परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, ना वे उसे जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है।
देखो तो शारीरिक मनुष्य जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर के बारे में ज्ञान हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आत्मिक रीति से हासिल करना है। तो जो शारीरिक मनुष्य है जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो बात नहीं समझ सकता है। ये जो बात यहाँ इस वचन में दिया गया है वो सिद्धांत इधर दिया गया है। अभी मैं आपको ये और भी साफ तरीके से आपको बताएं तो आप समझ जाएंगे, एक उदाहरण बताएंगे आपको। एक जगह में 3 बच्चे थे, एक बच्चा 10 साल, एक बच्चा 7 साल और एक बच्चा
तीन साल, तीने कोई काम किया, गलत काम किया और तीनों को फंस गया अपने माँ बाप के सामने करते हुए। माँ बाप तीनों को अभी दंड देना था, क्या तीनों को एक जैसा दंड दे सकता है? एक का उम्र 3, एक का उम्र 7, एक का उम्र 10, तीनों गलत काम किया, पकड़ा गया, अभी माँ बाप तीन को दंड देना है। एक तरह का दंड तीन को दे सकता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों, छोटा बच्चे में क्या कमी है? छोटे बच्चे को समझदारी इतना नहीं है, बड़े वाले को समझदारी ज्यादा होना चाहिए, होनी चाहिए, इसलिए वो बड़े वाले को ज्यादा दंड पाना है। और जैसे जैसे उम्र कम होता है वो दंड भी कम होना चाहिए, क्योंकि उतना ज्ञान हासिल नहीं कर सकता उस उम्र में। उसी तरह यहाँ क्या दिया गया है, जिनके पास पवित्र आत्मा है और वो अभी गलत काम करता है, उस गलती के लिए माफ नहीं है, उस गलती के लिए दंड है। और लेकिन जिस मनुष्य के पास पवित्र आत्मा नहीं होता है और वो गलती करता है, उस मनुष्य के लिए माफी है। अब तो याद होगा उड़ीसा में शायद 10 साल पहले एक सेवक ग्रहम स्टेन्स के नाम से, उनके दो बेटे के साथ एक गाड़ी में जला के मार डाला दारा सिंह आरएसएस वाले, और उनके वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए सेवक का, सेविकी सेविका उसके उसके बीवी ग्लैडिस स्टेन, उसके बाद उस दारा सिंह से मिलके बात किया और शायद 2-3 या 4 साल के बाद ग्लैडिस स्टेन ने बोला कि मैं दारा सिंह को माफ करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लैडिस स्टेन धीरे धीरे उनके जानकारी को कैसा हासिल किया कि ये दारा सिंह सब काम जानबूझ के नहीं किया, ये सब काम जानबूझ के नहीं किया, इसलिए हम ग्लैडिस स्टेन उस नतीजे पे पहुंचा कि ये सारा जो 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 जिम्मेदारी ये दारा सिंह पे नहीं डाल सकता है। ये दारा सिंह थोड़ा वातावरण का विक्टिम, विक्टिम को क्या कहता है,
शिकार,
शिकार, वातावरण का शिकार था, इसलिए वो गलती किया। तब ये बात सोचते हुए ग्लैडिस स्टेन उस नतीजे पे पहुंचा, बोला कि ये दारा सिंह मैं माफ करता हूं। अगर एक औरत जो जो पाप में पैदा हुआ और पाप में रहा, मतलब आम साधारण दुनिया के औरत, एक पापी को ऐसा माफ करता है कारण उसके उसके वातावरण का शिकार बना, तो आप सोच लो आजकल बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के विरुद्ध, मसीह के विरुद्ध थोड़े खामे करते हैं, क्या हम सोच सकते हैं कि उसके ऊपर ज्यादा के ज्यादा दंड आ जाए? क्या हम बोल सकते हैं कि उसको जान से मार डालना है? नहीं सोच सकते, क्योंकि वो उनके पास अभी पूरा जानकारी भी नहीं है यीशु कौन है, यीशु के बारे में, यीशु परमेश्वर का पुत्र, उसको जरा भी जानकारी नहीं है। वो कोई और कारण के लिए ये सब काम कर रहा है, कोई और पीछे है जो कोई और बात करता है और उसके कारण से ये काम कर रहा है, ये जानबूझ के सारे बातें को जान के ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए उनको माफी है। लेकिन जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास जानकारी है, जिनके पास बुद्ध है, अगर वो गलती करते हैं उसको माफी नहीं मिल सकता है, उसको दंड पाना है ताकि वो अपने गलती को समझ जाए। जैसे जैसे 10 उम्र वाले को आपको अच्छा दंड देने को फैसला किया और 7 उम्र वाले को कम दंड फैसला किया और 3 साल की उम्र वाले को सोचा छोड़ो परवाह नहीं वो बच्चा है कि नहीं, तो इसी मतलब इधर दिया गया है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो कोई बात करते हैं उसके लिए माफ नहीं है, लेकिन पुत्र के बारे में जो
विरुद्ध बात करते हैं उसके लिए माफ है, क्योंकि पुत्र को कौन जानता है। अभी जब तक किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, को कैसे मालूम पुत्र कौन है? आपको याद है वो 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 आत्मा के क्लास में दो चोर था ना अगल बगल यीशु के पास, और एक चोर क्या बोलता है, प्रभु बोला, बाइबल में क्या बोला, प्रभु मेरे को याद करो जब तुम्हारा राज्य तुम आते हैं, ऐसा दिया गया। प्रभु ने क्या बोला, यीशु। चोर को नहीं पहचाना कि प्रभु परमेश्वर का पुत्र, सोचा शायद वो कोई राजा होगा, शायद इसका एक राज्य होगा, तो मैं पूछूंगा भाई राजा मेरा याद करो ना। प्रभु बोला परवाह नहीं, कितने मतलब कोमलता हम्बलनेस तो क्या कहता है, नम्रता से पूछ रहा है ना, छोटी बात होता है, जरूर तेरा याद हो जाएगा। कैसा याद, पहला चोर का नाम बाइबल में लिखा गया है। जब वो चोर जी उठ के वापस आता, वो हैरान हो जाएगा कि इसके बातचीत सब इधर लिखा गया है, सारा दुनिया ये पढ़ेगा और ढूंढ के देखेगा कौन है वो चोर। अरे चोर जी कैसे हो, हमारा मालिक कैसा था, वो आखिरी 6 घंटे कैसा हुआ, एक एक लफ्ज जब एक एक मिनट जब चल रहे थे कैसे थे, मालिक का चेहरा कैसा था, मालिक का नजर कैसा था, कैसा महसूस हुआ उनके साथ मरते हुए। जरूर तुम मेरे साथ मेरे राज्य में होंगे, मेरे साथ मतलब तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ेगा, यही बोला। तो ये बात ऐसी इधर ही हम देख रहे हैं कि ये माफी जो प्रभु यीशु के विरुद्ध बोलते हैं उसको माफी है, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा पाता है वो सोच समझ के काम करना है, सोच समझ के। गलती होता है तो दंड पाना है, दंड पाना, क्योंकि उसको जिम्मेदारी होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जब देता है, परमेश्वर जब किसी को पवित्र आत्मा देता है उसको उसको एक जिम्मेदारी देता है, और उस जिम्मेदारी के अनुसार उसको चलना है। अगर वो जिम्मेदारी के विरुद्ध कोई काम करता है उसको दंड पाना है, ताकि वो अपना मिले हुए जिम्मेदारी के मुख्यत्व समझ जाए, इसलिए उसको दंड पाना है। अगले वचन पढ़ लेंगे, इस क्लास के अंत में आ गए हैं अभी। प्रकाशित वाक्य 5:13 एक समय आएगा जब सारा संसार सारा जगत शुक्रिया अदा करेंगे, जैसे अभी आप थोड़े क्षणों में आप प्रार्थना में शुक्रिया अदा करेंगे परमेश्वर को कि क्योंकि इतना बड़ा सच्चाई आप मिला है। लेकिन वचन में पढ़ेंगे भविष्यवाणी की, एक समय आएगा जब सारा जगत परमेश्वर को शुक्रिया अदा करेंगे, उस समय कितने लोग का शुक्रिया अदा करेंगे, कितने लोग को शुक्रिया अदा करेंगे, वचन में पढ़ लेंगे। भविष्य प्रकाशित वाक्य 5:13
फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युग युग रहे।
कितने लोग का धन्यवाद, सिंहासन पे ऊपर बैठे हुए और मेमने, दो ही है कबूतर इधर आया मैं सिंहासन के ऊपर बैठे हुए और मेमने को और कबूतर को ऐसा आया नहीं, सिर्फ दो है। तो यहाँ साफ साफ हम मालूमात कर दिया, आज सिर्फ दो ही बंदा है, पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह। परमेश्वर का पवित्र आत्मा है नहीं है हम नहीं बोला, बहुत लोग बोलते हैं, वो लोग बोलता है पवित्र आत्मा नहीं है, वो लोग के पास पवित्र आत्मा नहीं है इसलिए वो बात कर रहा है। हम कहते हैं पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा एक बंदा नहीं है, एक अलग सा परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर से निकलते हुए शक्ति है। अभी एक महत्वपूर्ण बात, यूहन्ना जो हमको पहला सिखाया ये बात आप समझ लेंगे, पहला यूहन्ना 1:3
जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है।
मेरे प्यारे बहनों, जो जैसे हमने भी मिला था प्रभु यीशु से और चेलों से, वो ज्ञान अभी आज यहाँ चुगट्टी में आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमारा आमगढ़ चुगट्टी नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया, अरे आमगढ़ में आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि हमारा सह भाग के साथ सिर्फ दो के साथ है, पिता के साथ और पुत्र यीशु के साथ। ये है सच्चाई, लेकिन ये सच्चाई अगर आप कोई से मिले जो ये सच्चाई आपको नहीं बताता है, वचन बोलता है आप कैसा रहना है, लेकिन ये जो वचन बिल्कुल उल्टा हो गया है। आज वचन पढ़ेंगे और बाद में आपको विवरण बताएंगे। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय 9-11।
हर कोई जेड़ा आगू बन के मसीह दी सिक्ख्या उत्ते कायम नहीं रहिंदा, परमेश्वर उहदे कोल नहीं है। जेड़ा उस सिक्ख्या उत्ते कायम रहिंदा है, उहदे कोल पिता ते पुत्र भी हन।
देखो पिता तो पुत्र भी है, और भी पढ़ो।
जे कोई तुहाडे कोल आवे ते सिक्ख्या ना लियावे, तां उस नूं घर विच ना उतारो, ना उस दी सुख मनाओ।
और
क्योंकि जेड़ा उसदी सुख मनांदा है, वो उसके बुरे कामों का भागी बनता है।
देखो इतना बुरा काम है, अगर हम हर जगह में सीखते जाओ कि परमेश्वर तीन है, परमेश्वर तीन है, तो हम बुरा काम कर रहे हैं। उस बुरा काम में हम हिस्सा नहीं लेना है, क्योंकि परमेश्वर तीन नहीं है। हिंदी में पढ़ लो ब्रदर संदीप।
जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है,
देखो जो कोई परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर रहता है,
उसके पास पिता भी है और पुत्र भी।
देखो उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है।
यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में सांची होता है।
देखा, लेकिन आज उल्टा हो गया। अगर आप किसी के घर में जाके देख लो, बोल लो कि श्री देव नहीं है, सिर्फ पिता और पुत्र है, वो आप उनके घर में आपको नहीं छोड़ेगा, और वो आपको नमस्कार भी नहीं करेगा, वो आपको भेज देगा बाहर, बाहर जाओ, इधर मत आओ। देखो सातान कैसा, ये इतना महत्वपूर्ण बात बिल्कुल उल्टा करा रहा है। हम किसको भगाना है, अभी कौन भगा रहा है? देखो कितना, देखो कितना चाल चलन, देखो शैतान का कितना चाल चलन हो गया है। हम किसको भगाना, लेकिन कौन भगा रहा है, देखो ये बात हो गया। अभी ये तो अभी हो रहा है, परमेश्वर की कृपा से हम इतना बड़ा ज्ञान मिल गया है, इतना बड़ा उजाला मिल गया है, इस सारा जो अंधेरा जो सारा इस सच्चाई को के ऊपर चाह रहे थे, अभी हमने हटाया और हटा के देखा, तीन से शुरू किया, तीन बंदा बोल रहे थे, लेकिन तीन बंदा नहीं है, सिर्फ दो, पिता और पुत्र। लेकिन सवाल अभी पैदा होता है, क्या पिता पुत्र है, क्या पुत्र पिता है, क्या दोनों एक है, या वो दोनों भी अलग अलग है, ये बात हम पढ़ना है। लेकिन अभी खाना का समय आ गया, पता नहीं कभी दोबारा ये मौका मिलेगा, शायद अगले हफ्ते मिलेगा, ब्रदर बताएगा आपको। लेकिन एक क्लास को खत्म करते वक्त एक वचन पढ़ के आपके ध्यान में छोड़ देंगे। प्रभु यीशु ने बताया यूहन्ना 10:30, 10:30, मैं और मेरा पिता एक हूँ। यूहन्ना 10:30,
मैं और पिता एक है।
देखो मैं और मेरा पिता एक है, ये एकता क्या, क्या शरीर की एकता या कोई और एकता, ये सच्चाई जानने के लिए आपको थोड़ा समय को इंतजार करना है। लेकिन जो सच्चाई आपने पाया आज, इसके लिए हम परमेश्वर से शुक्रिया अदा करके उस सच्चाई में हम चलेंगे, और उस सच्चाई का प्रकाश हम जहां जहां मौका मिलता है, हम उस प्रकाश को चमकाने को मौका देना है। परमेश्वर ही आपको आशीर्वाद करें। आमीन।
कोई प्रश्न सिस्टर? समझ आया?
हाँ जी, वो जितना शुरुआत से आई थी ना, मेरा ही क्वेश्चन सिर्फ